नंद महाराज तुरंत वहां से चल दिए। नंद महाराज मार्ग में आ रहे हैं, अपने लाला कन्हैया के बारे में सोचते आ रहे हैं। इधर कंस ने पूतना को नियुक्त किया, क्योंकि जब से अष्टभुजी देवी ने ये कहा था कि तुम्हारे मारने वाला कहीं अन्यत्र पैदा हो गया, तब से कंस बहुत चिंतित था और अपने जो मंत्री थे उसके मंत्री भी दुष्ट ही थे। कौन मंत्री थे उसके मंत्रणा देने वाले? लंबवक चाडूर तृणाव्रत महासन मुष्टिकारिष्ट दुविध पूतना के सिधे नुकई अन्यश्च असुर भूपालय बाण भौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बली माघद संत्रयः। उस दुष्ट कंस के दुष्ट ही मंत्रणा देने वाले थे। कौन कौन थे? बोले प्रलंबासुर, बकासुर, चाडूर, मुष्टिक और दुविध, पूतना, केशी, बाणासुर, जरासंध इत्यादि सब उसके सहयोगी थे। तो कंस ने बताया कि हमारे मारने वाला कहीं अन्यत्र पैदा हो गया, पर उस शत्रु को कैसे ढूंढा जाए? उस देवी ने बात बताई पर अधूरी बताई, पूरी नहीं बताई कि कहां उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ब्रज में ही कहीं पैदा हो गया, पर कहां किस स्थान पर हुआ ये तो बात बताई नहीं। तब तक पूतना बोली, अरे महाराज चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा शत्रु ब्रज में कहीं भी होगा, उस शत्रु को बस अपना भोजन बना लूंगी, बाल भोग ही होगा मेरा खाली। मेरा तो भोजन ही छोटे छोटे बच्चों को खाना है, और ब्रज में जितने बच्चे होंगे आज से लेकर के 10 दिन तक के बच्चे सबको खा जाऊंगी। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, वो बाल घातनी बाल हत्यारी पूतना कंस की प्रेरणा से और ब्रज में बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके मार रही थी, वो खा रही थी बच्चों को। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि उस पूतना 5 दिन तक ब्रज में घूमती रही बच्चों को मारती हुई, और 5 दिन तक उसने उन बच्चों को खाया जो कंस के पक्ष वाले लोग थे ना, उन बच्चों को खाया। भगवान की योग शक्ति से, लीला शक्ति से भ्रमित होकर के उस पूतना ने उन्हीं के बच्चों को खाया जो आगे चल के बड़े भारी असुर बनते। वो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुसा निगृहंती पुर ग्राम प्रजा दिशु, नगर ग्राम और सभी जगह बच्चों को खाती हुई घूम रही थी। जब ये बात महाराज परीक्षित ने सुनी तो एकदम भयभीत हो गए। गुरुजी पूतना बालघातनी राक्षसी ब्रज में बालकों को ढूंढती हुई और खाती भी घूम रही है, कहीं गोकुल हमारे गोपाल के पास न पंजा हमारे प्रभु के पास। देखिए भगवान से कितना प्रेम था महाराज परीक्षित का, केवल कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते ही ऐसा भाव आ गया, अरे अरे पूतना कहीं गोकुल में पहुंच गई तो हमारे कन्हैया के पास न कहीं पहुंच जाए, तो वहां भी कुछ अनिष्ट कर सकती है। तो सुखदेव गोस्वामी समझ गए उनके भाव को कि परीक्षित लगता है भयभीत हो रहे हैं, तो तुरंत ही दूसरा श्लोक बोलते हैं, नयत्र नयत्र श्रवणादीनी रक्षो घिनानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः या तु धान्यश्च तत्र हि। सुखदेव गोस्वामी तुरंत ही कहने लगे, राजन चिंता क्यों करते हो? जानते हो जिस स्थान पर लोग भगवान श्री हरि का गुणगान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उस स्थान पर किसी भी राक्षसी का, किसी भी राक्षस का कोई भी प्रभाव नहीं चलता। जिस घर में भगवान की पूजा होती हो, भगवान का कीर्तन श्रवण कीर्तन होता हो, वहां किसी प्रकार की राक्षसी भूत प्रेतों का कोई प्रभाव नहीं चलता। राजन, जब भगवान का गुणगान करने से ही किसी प्रकार का राक्षस का प्रभाव नहीं होता, राक्षसी राक्षसियों का, तो यहां साक्षात भगवान जिस गोकुल में मौजूद हो, तो वहां कोई राक्षसी और राक्षस कुछ बिगाड़ ही कह सकता है? चिंता क्यों करते हो? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के भाव को समझ गए थे कि महाराज परीक्षित को दुखी से होने लगे कि अरे पूतना ब्रज में घूम रही है, कहीं हमारे गोविंद के पास न पहुंच जाए। कितना प्रेम है कृष्ण से सुखदेव महाराज परीक्षित का। परंतु सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें सांत्वना दी, जहां साक्षात भगवान है वहां किसी प्रकार का अनिष्ट होने की कोई आशंका ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन वह पूतना बाल हत्यारी थी, 5 दिन तक घूमती रही, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की योग शक्ति से वो कंस के पक्ष के बालकों को ही खाती रही। अब भगवान की लीला शक्ति से वो पूतना गोकुल में आई, क्यों भगवान को अब लीला करनी है ना। पूतना गोकुल में आई आकाश मार्ग से, बहुत बड़ी पूतना थी, राक्षसी थी, 6 कोस लंबा उसका आकार था, 6 कोस लंबी और 2 कोस चौड़ी। कितनी लंबी चौड़ी थी वो राक्षसी। आकाश मार्ग में गोकुल के ऊपर घूम रही है, चारों तरफ उसने देखा, अरे भाई यहां तो गोकुल में चारों तरफ बड़े बड़े योद्धा धनुष बाण लेकर के खड़े हुए, क्योंकि नंद महाराज पहले से ही गोकुल की रक्षा के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को पहले से ही नियुक्त कर गए थे। चारों तरफ पूतना देखती है, कहीं भी घुसने का मार्ग उसे नहीं दिख रहा, ऊपर से ही देख रही है आकाश मार्ग से। अब पूतना ने विचार किया, अगर हम अपने इसी असली भेष में गोकुल में घुसेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, निश्चित रूप से झगड़ा हो जाएगा, क्यों सभी लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार खड़े हुए, इसलिए ऐसा उपाय किया जाए जो अपना काम भी बन जाए और झगड़ा भी नहीं हो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन वो पूतना माया भी तो थी, बहुत आसुरी माया जानती थी, तो अपनी माया से उसने अपना ऐसा रूप बनाया, इतनी सुंदरी बनी, इतनी सुंदर बनी। सुखदेव गोस्वामी कहते, रमा एव, जैसे लक्ष्मी जी जितनी सुंदर हैं, क्योंकि तीनों लोकों में सबसे कोई सुंदर स्त्री नारी है तो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी के समान बहुत सुंदर बन गई वो। जब सुंदर इतनी सुंदरी बनी और हाथ में कमल का फूल लेकर के और गोकुल के अंदर प्रवेश कर रही है, यहां बड़े बड़े योद्धा धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हुए हैं, रखवारी में कोई भी न घुस पाए। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन उस पूतना को न किसी ने रोका न किसी ने टोका। क्यों नहीं रोका टोका? ले बहुत सुंदरी थी वो, उसकी सुंदरता को देख करके जितने भी वहां गोप रक्षा में पहरे पर खड़े हुए थे उसकी सुंदरता को देख करके सब मुग्ध हो गए। ऐसे मुग्ध हो गए बस उसकी छवि की ओर देखते रहे, भाई कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही हो क्या। इतनी सुंदरता को देख करके सब भूल गए कि हमें भाई नंद महाराज ने कहा है कि कोई भी इसमें अंदर प्रवेश न कर सके अपरिचित व्यक्ति। लेकिन भगवान की माया ऐसी है, भगवान कहते हैं कि मेरी स्त्री रूपी माया ऐसी है कि बड़े 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 अच्छे अच्छे लोगों को मोहित कर देती है। बलम्मे पश्य माया स्त्रीणां जैनो दिशां या करोति पदाक्रांतं भ्रूगज्जं भेण केवलम्। भगवान कपिल देव ने कहा है ओहो मेरी इस स्त्री रूपी माया को तो देखो जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को भी पैरों से कुचल देती है। भगवान की स्त्री रूपी माया बड़ी बलवती है, बड़े बड़े अच्छों को मोहित कर देती है। एक बार की कथा आती है कि मनु महाराज की पुत्री थी देवहूति। देवहूति बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। जब देवहूति अपनी छत पर अपने केश सुखा रही थी तो उसी समय विवस्वान नाम का गंधर्व ऊपर होके निकला अपने विमान से, और उस गंधर्व की नजर जैसे ही देवहूति पर पड़ी, देवहूति बहुत सुंदर थी, तो उसकी सुंदरता को देख करके ऐसा बेहोश हो गया कि अपने विमान से ही नीचे टपक पड़ा हो इतना मुग्ध हो गया। ऐसी है भगवान की माया। जब भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए गए थे कौंडनपुर में, तो उस समय भी बड़े बड़े योद्धा रक्षा में तैयार खड़े हुए थे, कोई भी किसी प्रकार का घटना न घट जाए। परंतु द्वारकाधीश जैसे ही गए तो द्वारकाधीश भी मनमोहन है, सबके मन को मोहने वाले, तो एक तो द्वारकाधीश की छवि को देख करके ही लोग थोड़े मोहित हो गए, न किसी ने रोका न किसी ने ठोका। अंबिका के मंदिर में जब रुक्मिणी भगवती रुक्मिणी पूजा करने के लिए गई थी और वो भी जब पूजा करके निकली बाहर तो उन्होंने अपने मुख से अपनी लट्टों को हटा करके देखा कि अभी तो द्वारकाधीश आए नहीं। तो ऐसा लिखा है भागवत में, जैसे ही रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से अपने मुख से लट्टें हटाई तो उनका मुख की इतनी सुंदरता, इतनी सुंदर छवि थी, उसको देख करके जो बचे कुचे सैनिक थे वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े उनकी सुंदरता को देखकर। तो भगवान की जो स्त्री रूपी माया है बड़ी बलवती है, अच्छे अच्छों को परास्त कर देती है। पर सुखदेव गोस्वामी पहले ही कह चुके कि जहां साक्षात भगवान विराजमान हो वहां किसी भी पूतना राक्षस का प्रभाव नहीं चलता। अरे जहां नित प्रति भगवान का गुणगान होता रहता है, जो हरि नाम करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वही किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि नामाश्रय कर यतने तुमी थाके आपन काजे, यानी जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम का आश्रय लेकर के हरि नाम करता रहता है तो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमेशा भक्तों के लिए हरि गुणगान करते रहना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
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 रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे,
रात दिन इनमें संयम के कोड़े पड़े।
अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती,
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 प्राण जाए मगर नाम भूलो 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 मती।
मुरली वाले को मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
तो जहां पर भगवान का हरि नाम का कीर्तन होता है, न किसी राक्षस और राक्षसियों का प्रभाव नहीं चलता। यद्यपि पूतना बड़ा मायावी भेष बना करके आई थी, न किसी ने रोका न किसी ने टोका, सीधी नंद भवन में पहुंची। मैया यशोदा ने देखा, भोली भाली मैया यशोदा, आवत देख पीठनो दीनो, कुशल बैठ कुशल पूछ अतनीय बिठराई। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा कोई सुंदरी आई है भाई, तो मैया ने आते ही उसको देख करके बैठने के लिए पीड़ा डाल दिया, पीड़ा जानते पीड़ा, पहले बहुत छोटा होता था पीड़ा, जिस पर बैठ करके माता चक्की चलाती थी पहले। आवत देखे पीठनो दीनो कुशल पूछ अत नीय बिठराई, मैया ने बैठवे के लिए पीड़ा डाल दियो और कुशल छेम पूछी, आओ देवी जी आप अच्छी पधारी, आपका स्वागत है। अब जैसे ही पूतना पीड़ा पर तो बैठ गई, फुरवानी यशोदा मैया की ओर देखा। पूतना ने विचार किया कि मैया यशोदा हमें पहचान रही है, तभी तो टुकुर टुकुर हमारी ओर देख रही है ना। पूतना बोली, यशोदा जी मेरी ओर तुम क्या देख रही हो, टुकटुकी बांध के पहचान रही हो ना, पर हमको तुम पहचान नहीं पाओगी। क्यों नहीं पहचान पाओगी, क्योंकि हम तुम्हारे गोकुल की ब्रज की गोपी तो है नहीं। देवी कहां से आई है आप? बोली मथुरा वासिनी गोपी सांप्रतम विप्रकामिनी श्रुतम वाचक वत्रिण तत्व मंगल सूचक। अब पूतना बड़ी कपट भरी तो थी, बाहरी बाहरी वाले रूप बहुत बढ़िया बनायो, पर अंदर से छल कपट है और जहर भी लगा के आई अपने स्तन से, अपने स्तन से हलाहल जहर लगा के आई और क्या कह रही है, देखो यशोदा जी मैं तुम्हारी या ब्रज की गोपी तो हूं नहीं, मैं मथुरा की पंडितानी हूं, पंडितानी विप्रकामिनी सांप्रतम विप्रकामिनी, मैं मथुरा की चौबे नहीं हूं, पंडितानी मथुरा में चौबे बहुत है ही। देखो यशोदा जी मैंने किसी के माध्यम से सुनो कि तुम्हारे वृद्धा अवस्था में एक लाला की प्राप्ति भई है, तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता भई, मारे खुशी के मारे में घर में नहीं रह सकी। मैंने विचार कियो, देखो यशोदा रानी के वृद्धा अवस्था में एक लाला की प्राप्ति भई है, तो चलो बाकू आशीर्वाद देखिए आप, हम पंडितानी तो है, तो आपके लाला को आशीर्वाद देवे के लिए मैं आई हूं डोड़ी डोड़ी। भोली भाली मैया बिचारी आई गई बात में। मैया बोली, देखो तुम सवन के भाग्यंश हो, यह वृद्धा अवस्था में एक लाला की प्राप्ति भई है, तुम सवन के आशीर्वाद सो और सवन के भाग्यंश हो या लाला की प्राप्ति भई है, या मेरो कछु नहीं है, तुम सवन को ये लाला। भोली भाली मैया। इधर पूतना बोली, देखो मैया यशोदा जी मैं तुम्हें एक रहस्यमयी बात बताती हूं। क्या बात है देवी? तो पूतना कहती है, मम स्तनौ च सर्वश्रेष्ठ स्तनौ नित्यम अमृतम झरतः येन पीतेन स्वयं निसंदेह सिद्ध देह स्यात्। पूतना बोली, देखो यशोदा जी तुम्हें एक रहस्यमयी बात बताती हूं मैं। ये गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं। देखो यशोदा जी तुम्हें एक रहस्यमयी बात बताती हूं कि मेरे जो स्तन है ना, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सबसे श्रेष्ठ मेरे स्तन हैं। मम च स्तनौ सर्वश्रेष्ठ स्तनौ। क्या विशेषता है इनमें देवी? बोल नित्यम अमृतम झरतः। मेरे इन स्तनों से हमेशा दूध नहीं अमृत टपकता रहता है, अमृत। और एन पीवेन स्वयं निसंदेह सिद्ध देह स्यात्। जो व्यक्ति जो बालक मेरे स्तनपान करेगा मेरे दूध को पिएगा तो निश्चित रूप से उसकी बहुत लंबी आयु हो जाएगी, लंबी आयु। माताएं तो चाहती हैं कि हमारे बालक युग युग जिए, खूब लंबी आयु हो। सब माताएं चाहती हैं अपने बच्चों की आयु खूब बढ़े और खूब लंबी आयु हो। यशोदा मैया बातन में आएगी, अरे देवी फिर तो बहुत बढ़िया तुम्हें विशेषता है। हाँ यशोदा जी यदि आप कहो तो तुम्हारे लाला को मैं स्तनपान करा दूं। और स्तन से क्या लगा के आई है मनीष जी, क्या लगा के आई? जहर लगा के आई है। और क्या कह रही है, मेरे स्तन से क्या निकलता है? अमृत टपकता है। कितनी छल कपट से भरी हुई है। पर भोली भाली मैया यशोदा बातन में आएगी, ठीक है देवी, अरे मेरो का तुम सवन को लाला है, अरे तुम्हारी ऐसी विशेषता है तो स्तन पान कराओ, मेरे लाला की खूब लंबी आयु है जय। और देखो तुम स्तन पान कराओ और मैं जब तक तुम्हारे लिए कछु नाश्ता पानी बना के ले रही हूं। यशोदा जी तो थोड़ी अकेले नाश्ता पानी बनाए के लिए थोड़ी निकल गई, और उस समय रोहिणी देवी भी किसी काम में लगी, वही वो भी वहां पर नहीं थी। अब पूतना ने देखो कि अब तो यहां और कोई आसपास है नहीं, चारों तरफ देखा, और अब मैं समझी ये बालक है ना, ये बालक निश्चित रूप से हमारे स्वामी को यही तो काल होगा, और आज इस काल की काल में आ गई हूं, देखिए अब हमारे स्वामी का काल कैसे बन पाएगा, आज इसको खा जाऊंगी मैं, और खाना क्या जहर पिला के ही मार दूंगी इसको मैं। ऐसो विचार करके वह पूतना ने बाल कृष्ण भगवान की ओर देखो, तो भगवान ने जैसे ही पूतना देख रही भगवान को, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों करी? बोले आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, लीला करने के लिए ही तो इस धराधाम पर अवतरित हुए। भगवान ने विचार किया कि हमें लीला की श्री गणेश यहां से ही करनी है, अपनी श्री कृष्ण लीला की ही श्री गणेश यहां से ही करनी है, और ये पूतना हमारी मौसी बन के आई है, हमारी मां बन के आई है, हमें दूध पिलाए के लिए, और या को रूप ये तो असली रूप है नहीं, ये तो परम राक्षसी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। पर भगवान ने विचार किया हो या पूतना को, इस पूतना की ओर मैं देखूंगा, ये माया भी इसका भेष है और मेरे सामने माया टिकेगी नहीं, क्योंकि भगवान तो मायापति हैं, भगवान के सामने माया कहां टिक सकती है? कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, और जहां कृष्ण तानाए मायार अधिकार, जहां कृष्ण है वहां भला माया कहां चल सकती है। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, चलो भाई कोई बात नहीं, हमें अपनी लीला की श्री गणेश हासिल करनी है, अगर मैं ये आंखों देखूंगा तो ये माया इसकी हट जाएगी और ये भाग जाएगी फिर। और कुछ संतों का विचार है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, भगवान ने विचार कियो भाई देखो हमारे पास तक तो बड़े पुण्यात्मा ही आ पाते हैं, ये तो राक्षसी है, बाल घातनी है, इस पूतना ने इस जन्म में तो कोई बढ़िया काम कियो नहीं है, बहुत सारे बालकों को खायो है ना, बहुत सारे बालक खाए जाने, इसने कौन से जन्म में ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रभाव से और मेरे पास तक ही आई? तो आने आंख बंद करके उसके कई जन्मों का देखा, समझ गया ओहो मैं समझ गया, ये बलि महाराज की पुत्री थी ना, बलि महाराज की पुत्र है, उनकी बहन थी, रत्नमाला इसका नाम था। जब बामन भगवान गए थे बलि महाराज के यज्ञ में, तो रत्नमाला ने भी देखा ये बड़ी बहुत सुंदर, भाई कितना बालक है, आहा ऐसो बालक कहीं मेरे हो तो इसको स्तन पान कराती। मातृभाव उसे उत्पन्न हुआ उस समय, और जब भगवान ने दो पग में सारा कुछ नाप लिया बलि महाराज का और बलि को भी बांध के डाल लिया, तब उसका भाव बदल गया, अरे अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, मैं तो उसको बहुत सुंदर बालक मान रही हूं, तो जितना सुंदर उतना ही दुष्ट है, ये तो मारने के लायक है, ऐसे बालक को दूध क्या पिलाना, जहर पिला के मार देना चाहिए ऐसे बालक को, वाकी ऐसी भावना आई। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, ये भगवान की विशेषता है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है भगवान वही व्यवस्था करते हैं। तो भगवान समझ गए आहा ये वो रत्नमाला जी हैं। और कुछ संत भगवान की आंख बंद करने का कारण बताते हैं, भगवान ने इसलिए आंख ही बंद करी, भगवान ने आंख बंद करके विचार कियो, अरे हमने तो सोची कि यह ब्रज में बहुत सारी गैयाए यहां दही माखन खाए के लिए खूब मिलेगो दूध दही और माखन, और यहां तो हमारी मौसी हमको माखन क्या जहर खवावे के लिए आई है, तो वही जहर खाने की हमें तो आदत है नहीं, जहर खाने की आदत तो भोले बाबा को है। तो आंख बंद करके भोलेनाथ को स्मरण किया, भोलेनाथ देखो मौसी जहर लगा के आई है, भाई जहर हमने तो कभी पियो नहीं है, हमें तो आदत है नहीं, और तुम तो जहर खाए के आदि हो, तो जहर जहर तुम पी जाओ और दूध हम पी लेंगे। आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। शुकदेव गोस्वामी कहते राजन वो पूतना अविद्या ही थी, वो नहीं समझ पाई भगवान के प्रभाव को, और उस पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को पालने में से ऐसे पकड़ के उठायो जैसे मानो कोई कोई सर्प और नेवला को चूहा समझ के पकड़ ले, क्योंकि सर्प चूहा को पकड़ लेते हैं खा लेते हैं चूहा के लिए, और नेवला जो होता है चूहे के आकार का चूहा ही जैसा लगता है, पर नेहा सर्प जो नेवला होता है सर्प के कई टुकड़े टुकड़े कर देता है, नेवला तो सर्प का भी काल है। तो जिस प्रकार सर्प चूहा के धोखे में और नेवला को पकड़ ले, ऐसे ही उस पूतना ने भगवान को साधारण बालक समझ करके उस पालने में से उठा लिया। उठाते ही उसने बस अपना स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया, और बालक की तो आदत होती है खूब कस के दोनों हाथ से स्तन पकड़ लेते हैं और फिर मुंह में दे करके चूसते हैं स्तन के लिए, वो चुसुर चुसुर करके स्तन पान करने लगे, और भगवान दूध के साथ पीते पीते उसके प्राणों को भी पीने लगे। जब प्राण उसके निकलने लगे तो छटपटाने लगी, क्योंकि प्राण निकलते समय बड़ा भारी कष्ट होता है, जब छटपटाने लगी तो एकदम चिंगाड़ने लगी और कहती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव नर्मणि डिम्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसून्य गात्र क्षिपतिरुरोदः। सा मुंच मुंचालमिति कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले मौसी देखो भाई हमको छोड़ना नहीं आता, पहले तो किसी को पकड़ते नहीं है, और जब कोई हमारी पकड़ में आ जाता है तो उसे बीच में हम छोड़ते नहीं। इतनी जोर की चिंगाड़ी निष्पीड्यमाना जीव मरमणि उसके सारे शरीर की सारी इंद्रियां स्थिर पड़ गईं, सारे शरीर में पीड़ा होने लगी, नेत्र उसके नेत्र फैले हो गए, नेत्र खुल गए खूब, और अपनी भुजाओं को फड़फड़ाने लगी। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वो पूतना असली वेश में आ गई और उसने उड़ना शुरू कर दिया, और इतनी जोड़ की चिंगाड़ी कि मानो पृथ्वी हिल गई हो, मानो वज्रपात होने वाला हो, सभी ब्रजवासियों कान बहरे हो गए, कान बहरे हो गए, पृथ्वी हिल गई, बड़ी जोड़ की आवाज, और पुतना आकाश मार्ग से उड़ना शुरू कर दिया उसने। राक्षसी भेष में आ गई और भगवान श्याम सुंदर उसके स्तन को पकड़े हुए लटके जा रहे हैं। पूतना के प्राण निकलने वाले थे, पैसे जी फड़फड़ाती हुई जा रही है पंख उड़ती हुई, पर जैसे ही गोपियों को पता लगा कि यहां कन्हैया नहीं है और ये कोई राक्षसी है, मैया यशोदा और रोहिणी तो भाई मूर्छित होकर गिर पड़ी, उन्हें अपने शरीर का होश आभास नहीं रहा। अरे वृद्धावस्था में एक लाला की प्राप्ति हुई, और ये कौन राक्षसी आई जो हमारे लाला को लेके चली गई, मैया के तो मानो प्राण ही निकल गए हो, एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी धड़ाम से जमीन पर। जिन गोपियों को होश था वो गोपियां इतनी तेजी से भागी, जीव गोस्वामी लिखते हैं पूतना तो ऊपर उड़ रही है और गोपियां उसकी छाया के नीचे भागती जा रही है, बड़ी तेजी से भागती जा रही है। कंकड़ पत्थर खाई खल्लड़ कुछ भी नहीं देख रही, मानो कृष्ण उनके प्राण ही थे गोपियों के। पूतना ब्रज से बाहर निकली और उसने अपने पंखों से बहुत सारे वृक्षों को तोड़ दिया, यानी 6 कोस के सुंदर बगीचे को नष्ट कर दिया उसने। इतने बढ़िया बगीचे में जाके गिरी, सब बगीचे को नष्ट कर दिया उसने। पहले तो फड़फड़ा के उड़ती रही सारे बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा था, और फिर बगीचे में गिर पड़ी, सारा बगीचा नष्ट हो गया। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वो बगीचा ब्रज का नंद महाराज का नहीं था, वो कंस के ही सुंदर बगीचे में जाके गिरी, सब वृक्ष और पेड़ को नष्ट कर दिया उसने। क्योंकि कंस का बहुत सुंदर बगीचा था, बड़े बड़े बढ़िया उसमें फल आते थे, बड़े सुंदर सुंदर फूल आते थे, लेकिन वो किसी मतलब के नहीं, भगवान की सेवा में नहीं आते थे वो। अरे जो पुष्प और जो फल भगवान की सेवा में नहीं आए वो किस काम के। पूतना ने सारा कंस का जो बड़ा सुंदर बगीचा था सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, धड़ाम से नीचे जमीन पर जाके गिरी वो। 6 कोस लंबी थी, छती 18 किलोमीटर की, 18 किलोमीटर लंबी पूतना पड़ी भई है। इधर गोपियां दौड़ी दौड़ी पहुंची वहां, तो एकदम वो ऐसी पड़ी है, भगवान श्री कृष्ण उसके छाती पर बैठे बैठे किलकारी मार रहे हैं। अब गोपियों ने देखा भाई पूतना ये राक्षसी कितनी विशाल राक्षसी है, पर कन्हैया तो हमारे लगता है बिल्कुल ठीक है, पर वो उतारे कैसे, क्योंकि 2 कोस ऊंची थी वो, जब 6 कोस लंबी थी तो 2 कोस ऊंची भी थी वो। अब 2 कोस इतनी ऊंचाई पर गोपियां कैसे जाके उतार के लाएं, तो जीव गोस्वामी लिखते गोपाल चंपून गोपियों ने उसी पूतना के हाथों का जीना बनाया और बड़ी हिम्मत करके ऊपर चढ़ गई और कन्हैया को उतार के ले आई नीचे, एकदम बालक बिल्कुल सुरक्षित। बालक को लेके दौड़ी दौड़ी मैया सोदा के पास आई, मैया लाला बिल्कुल ठीक है, अब तुम ठीक चिंता मत करो। पर मैया को बिल्कुल होश है ही नहीं, मैया एकदम मूर्छा अवस्था में पड़ी हुई है। गोपियां खूब उनको जगा रही हैं, अरे मैया यशोदा लाला को गोदी में लो, लाला ये आ गए हो, पर मैया को विश्वास नहीं है रहे हो कि मेरे लाला अब संसार में मौजूद होगा, वो नहीं समझ पा रही मैया कि अब मेरा लाला संसार में जीवित नहीं होगा। पर गोपियों ने बड़ी मुश्किल से मैया की मूर्छा जगाई, मूर्छा कहा, गोपियों ने मैया की गोद में लाला को रख दिया, अरे मैया लाला को स्तनपान कराओ, कन्हैया तुम्हारी गोद में बैठो भयो। तब मैया की थोड़ी मूर्छा जगी और मैया ने जैसे ही लाला को अपनी गोद में देखो तो मैया को फिर मूर्छा आ गई, अब मैया को मूर्छा आई, बहुत ज्यादा खुशी हो गई ना, अब प्रसन्नता की खुशी की मूर्छा हो गई मैया। तब गोपियों ने कहा, रही मैया लाला को स्तनपान कराओ ना, कन्हैया भूखो है। श्री राधे, तब मैया जब होश में आई तो मैया ने लाला को स्तनपान करायो। जब कन्हैया स्तनपान करने लगे तो गोपियां बोली, मैया अब कोई चिंता मत करो, लाला बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, इसको कोई किसी प्रकार की बीमारी रोग नहीं है। क्यों, केवल 6 दिन के थे, वो 6 दिन का बालक था। तो जब छोटा बच्चा होता है, माँ का स्तनपान दूध पीना बंद कर दे तो माताएं समझ जाती हैं बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, दूध नहीं पी रहा है। और जब बच्चा दूध पीने लगे तो माताएं प्रसन्न हो जाती, हाँ हमारो बालक बिल्कुल ठीक है, अब तो दूध पी रो लाला। गोपियां खूब प्रसन्न वहीं, कोई मैया लाला बिल्कुल ठीक है, पर देखो भूतनी थी राक्षसी, उस राक्षसी को उतारो, झारो लगाओ झारो। तो उन गोपियों ने गाय की पूंछ से और उनके झारो लगा रही है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, गोमूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुश्च सकृतां द्वादशांगे सुनानभि। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण उस लाला के लिए, बालक के लिए पहले गौमूत्र से स्नान कराया और पुनर्गौरज सार्वका, फिर गौरज से उनका फिर लेप किया। और इतना ही नहीं, रक्षां चक्रुश्च सकृतां द्वादशांगे सुनाम भी। उस बालक की रक्षा के लिए उन गोपियों ने गाय के गोबर को लेकर के, गाय के गोबर से और भगवान के ही नाम ले लेकर के 12 जगह तिलक लगाए। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। भगवान के ही नाम लेकर के और भगवान की रक्षा के लिए गोबर से 12 जगह उनके शरीर पर तिलक लगाए। जैसे वैष्णव लगाते ना, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः और माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, फिर वैष्णव नमः, बामनाय नमः, बामनाय नमः, मधुसूदन नमः, नमः त्रिविक्रमाय नमः, फिर वैष्णव नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। जैसे वैष्णव 12 जगह भगवान के 12 नाम लेकर के तिलक लगाते हैं, ऐसे ही उन गोपियों ने गाय के गोबर को लेके और भगवान के 12 अंगों पर भगवान के नाम ले लेकर के भगवान की रक्षा के लिए उन्होंने तिलक लगाए। द्वादशांगेषु नामभि, 12 जगह भगवान के नाम लेकर के उनके तिलक लगाए। तो देखिए यहां हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गोपियों ने गाय की पूंछ से झारो लगायो और गौमूत्र से लाला को स्नान करायो और गाय के गोबर से उनके तिलक लगाओ। इसका मतलब गाय बहुत महत्वपूर्ण है। गाय इतनी महत्वपूर्ण है कि गाय से महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है। बिना गाय के कोई भी धार्मिक कार्य सफल नहीं हो सकता। जब कोई भी अनुष्ठान करें तो गोबर से जगह को लीप के पवित्र करते हैं, गाय के गोबर से, है ना। गौमूत्र भी चाहिए, गौघृत भी चाहिए और गाय का दूध भी चाहिए, गौरस भी चाहिए। बिना गाय के हमारा कोई धार्मिक कार्य सफल नहीं होता। तो गाय बहुत महत्वपूर्ण है, गाय की हमें सेवा करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि गाय बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति का धर्म बनता है कि गाय की सेवा करें। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, और प्रभुपाद जी ने यहां तक कहा है कि जिस व्यक्ति के पास यदि थोड़ी सी जगह हो गाय रखने के लायक, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक गौ माता को तो घर में रखना चाहिए उसे। लेकिन आजकल लोग गाय कहाँ रखते हैं, चाहे कितनी जगह हो घर में, बजाय गाय के बढ़िया सा कुत्ता रखते हैं, है ना। गाय नहीं पालते आजकल, कुत्ता पालना लोगों ने सीख लिया है, बढ़िया से बढ़िया विलायती कुत्ता घर में रखेंगे और दरवाजे पर बोर्ड लगा देंगे कुत्ते से सावधान, जो कोई साधु संत भी उसमें घर में नहीं घुस पावे, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। अरे जिस घर में संत के चरण नहीं पड़े वो घर तो सांप के बिल के समान है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, वो घर तो सांप के बिल के समान है। पर संत जाएंगे कैसी, बोर्ड लग रहा है कुत्ते से सावधान, बढ़िया से बढ़िया विलायती कुत्ता पालेंगे और कुत्ता की खूब सेवा करेंगे, बढ़िया से उसका स्पेशल अलग से बेड होगा, बढ़िया उसको स्नान कराएंगे, है ना। चाहे भले ही वो पूरा कहीं किचन में घूमता रहे, कहीं बेड पे घूमता रहे, कहीं घूमता रहे, चाहे सबको रसोई झूठी करता रहे, उससे उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि वो डॉग कॉन्शियसनेस है, वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो बढ़िया है भाई, हर व्यक्ति का सेवा करने का तो स्वभाव होता है, उसे किसी न किसी की सेवा तो करनी है। अब चाहे गॉड की सेवा करो, और गॉड का उल्टा क्या हो गया, डॉग हो गया, जो गॉड की सेवा नहीं करता है तो उसे डॉग की सेवा करता है वो। सेवा करना तो हर व्यक्ति का स्वभाव है, बिना सेवा किए नहीं रह सकता। पर जो व्यक्ति भगवान की सेवा न करके, भगवान की प्रिय गौ माता की सेवा न करके और कुत्ता की सेवा करता है, तो अंत में निश्चित रूप से अगला जीवन उसका कन्फर्म है। कौन सा, कुत्ता का जीवन कन्फर्म है, निश्चित रूप से वो कुत्ता ही बनेगा, क्यों, उसकी चेतना ही ऐसी रहेगी सदा तदभाव भावता, उसकी भावना ही ऐसी रहती है हमेशा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गाय की सेवा करनी चाहिए। अरे जिसके घर गाय रखने के लायक जगह नहीं हो, तो जहां गौशाला हो तो उस गौशाला में जाकर के अगर सामर्थ्य है तो कहें भाई देखो एक एक गाय की सेवा हमारी तरफ से रखो, क्योंकि हमारे यहां तो जगह है नहीं गाय रखने की, तो हमारी तरफ से एक गाय की सेवा करो। गाय सेवा करना मानव का परम धर्म है, परम धर्म है गाय सेवा करना। अरे स्वयं भगवान ने गाय की सेवा करी है, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा है, गोपाल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
मेरो मुरली मनोहर नंद लाला,
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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
गोविंद गोविंद गोपाला।
मुरली मनोहर नंद लाला,
मेरो मुरली मनोहर नंद लाला,
मेरो मुरली मनोहर नंद लाला,
मेरो मुरली मनोहर नंद लाला,
ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
कृष्ण गोविंद 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 गोपाल।
भगवान का नाम गोपाल पड़ा गाय की सेवा करने से, और भगवान ने गाय की सेवा ऐसी सेवा करी अपने स्वामी समझ करके भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा करी। भगवान 10-11 साल वृंदावन में रहे, अपने पैर में जूता चप्पल नहीं लगाई बिल्कुल। कहते अरे गाय हमारी स्वामी ने, हमारे स्वामी हैं गाय पर हम सेवक हैं, भला हम जूता पहन के चलेंगे, गाय हमारी नंगे पांव चलेंगी। तो भगवान ने गाय का कितना सम्मान और कितनी सेवा करी है। और हम भी यदि भगवान की उस गाय की सेवा को देख करके सेवा नहीं करें तो बताइए हम कैसे भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इसलिए गाय की सेवा करना सबका परम कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन उन गोपियों ने भगवान का ही नाम लेकर के और भगवान की रक्षा के लिए भगवान के 12 जगह तिलक लगाई। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान की रक्षा के लिए और वो भगवान के नाम लेकर के वो तिलक लगा रही है।
हरि से बड़ा हरि का नाम,
हरि से बड़ा हरि का नाम,
हरि से बड़ा हरि का नाम,
हरि से बड़ा हरि का नाम।
अंत में निकला ये परिणाम,
अंत में निकला ये परिणाम,
हरि से बड़ा हरि का नाम,
हरि से बड़ा हरि का नाम।
कृष्ण भगवान की
जय।
भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जो हरि नाम का जप करते हैं बड़े भाग्यशाली और बड़े बुद्धिमान जीव हैं वो। भगवान का नाम बहुत कल्याणकारी है। गोपियों ने भगवान के ही नाम लेकर के भगवान की रक्षा के लिए गोबर के तिलक लगाए। और जब भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण सबको स्वस्थ एकदम बढ़िया स्वस्थ लगे तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इधर नंद महाराज आ रहे थे।
इतने में तब नंद नृप आए भवन मझार, देख पूतना देह को कीना का।
जब नंद महाराज मथुरा से लौट करके आए उन्हें सारी बात ये मालूम पड़ी और देखा पूतना कितनी विशाल पूतना और हमारे लाला को लेके चली गई थी। नंद महाराज बहुत दुखी हुए और बोले देखो मेरे भगवान नारायण ने ही मेरे लाला की रक्षा कर ली है, नहीं तो भला इतनी भारी पूतना इतनी विशाल पूतना से इतने छोटे बालक की रक्षा कैसे होती। नंद महाराज का वात्सल्य भाव है, भगवान के प्रभाव को थोड़ी जानते हैं वो अपने भगवान नारायण को धन्यवाद देते हैं क्योंकि भगवान नंद महाराज भगवान नारायण की बहुत पूजा करते थे। मेरे नारायण भगवान की कृपा से मेरे लाला की रक्षा है गई है, नहीं तो इतनी विशाल पूतना से भला मेरे लाला की रक्षा कैसे है पार्वती।
देह काट कर तास का फूका विपिन मझार, पुत्र राम हेत तव विप्रजिमाए हजार।
इधर नंद महाराज ने अपने गोपों से कहा देखो बसदेव जी लगता है कोई बहुत बड़े देवता हैं, बताओ उन्हें कैसे मालूम पड़ेगी कि ब्रज में तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात है, बार हुआ, तुम जल्दी से जाओ। प्रनंद महाराज ने उस पूतना के शरीर के कई टुकड़े करवा के और उसको जलाया। जीव गोस्वामी तो लिखते हैं कि उस पूतना के कई टुकड़े कर करके अलग अलग जगाए, क्योंकि इतनी बड़ी पूतना थी एक चिता में जल नहीं पाती, वो इतनी बड़ी। टुकड़े कर करके अलग अलग उसको जलाया और उसके चिता में जो धुआं निकला, उस धुआं में इतनी सुगंध, इतनी सुगंध, इतनी सुगंध कि पूरा ब्रज मारे सुगंध के मारे एकदम सुगंधित हो गया। सभी आश्चर्य में, इतनी सुगंध कहां से आ रही है ये? तो पता लगता कि पूतना राक्षसी थी, उसको जलाया जा रहा है, उसके शरीर में से, उसकी चिता में से इतनी सुगंध निकल रही है। महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी, अरे पूतना तो राक्षसी थी, बाल हत्यारी थी, कोई चंदन की लकड़ी में तो उसको जलाया नहीं गया जो उसमें से खुशबू निकलती, साधारण लकड़ी से उसको जलाया गया। और लकड़ी की व्यवस्था, जीव गोस्वामी कहते हैं लकड़ी की व्यवस्था पूतना ने पहले ही कर दी, कंस के बाकी सब लकड़ी तोड़ रखी ना वाले, है ना, तो साधारण लकड़ी से उसको जलाया गया था। तो इतनी सुगंधित उसकी चिता में से कैसे निकली समझ में नहीं आ रही। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन जानते हो, यही तो भगवान की भागवतता है। भगवान प्रत्येक जीव का कल्याण करते हैं, भगवान आखिर भगवान है। अरे पूतना ने भले ही किसी भाव से सही, आखिर भगवान की मां बन के आई वो, चाहे भले ही नकली मां बन के आई हो वो, पर भगवान तो जीव का कल्याण करते ही हैं। कोई किसी भी भाव से भगवान के पास आवे तो किसी भी भाव से भगवान भाव की अपेक्षा नहीं रखते, किसी भी तरह से भगवान से संबंध कोई जोड़े। गोप्यः कामात भयात कंसो द्वेषा चेद्यादो नपः संबंधात विस्नेह स्नेहात इयम् भक्त्या वयम् व्योः। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा था सातवें स्कंद में कि देखो भगवान की ये विशेषता है कि कोई व्यक्ति भगवान से अपना संबंध जोड़ ले, अब वो संबंध चाहे कैसा ही हो, भगवान उसका कल्याण करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान शत्रु को भी तारते हैं, शत्रु का भी कल्याण करते हैं। निज बैरिन को कृष्ण ने जननी की गति दीन, अस कृपाल गोपाल को कौन भजे मतिहीन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपनी बैरिन को भी, शत्रु को भी भगवान ने ऐसी गति दी, जननी की गति दी, जननी की गति दे दी, उसे अपने धाम की प्राप्ति करा दी। तो ऐसे कृपालु गोपाल भगवान के लिए ऐसा कौन व्यक्ति होगा मूर्ख के अलावा जो भगवान का भजन न करे। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन ये भगवान के गुण हैं, भगवान के गुण हैं, और इसी गुण से सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, और भगवान के इसी गुणों को देख करके समझ करके वो भगवान श्री कृष्ण के पक्के भक्त बन गए। वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि जब वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो कर ली, पर वो बड़े चिंतित थे इस महापुराण का प्रचार प्रसार करने वाला कौन ऐसा शुद्ध भक्त हो, क्योंकि भागवत अमल पुराण है, तो ऐसा एकदम शुद्ध भक्त हो जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मत्सर सबसे विमुक्त हो, बड़े चिंता में थे। तो नारद जी ने ही बताया, अरे नारद व्यास जी क्यों चिंता करते, तुम्हारे ही तो पुत्र सुखदेव गोस्वामी हैं जो उनके अंदर किसी प्रकार का विकार है ही नहीं। बोले महाराज वो तो जन्म लेते ही वन में चले गए, वो आएंगे कैसे? नारद जी बोले, व्यास जी तुम बड़े भोले भाले हो, अरे तुमने जिस भागवत की रचना की है इसमें 18,000 मंत्र हैं, इस भागवत के मंत्र ऐसे आकर्षित करने वाले हैं, अरे इसी में से कुछ मंत्र भगवान के गुण और जो भगवान का रूप है, भगवान के गुण, भगवान के रूप और भगवान के गुण, इनके बारे में ऐसा उनको कोई शिष्य भेज दो, उनको जाके सुनाए। तो सुखदेव गोस्वामी निर्जन वन में रहते थे और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते थे वो, और उनकी लंबी समाधि लग जाती थी। तो व्यास जी के दो शिष्य गए और दो मंत्र उनको पढ़ा के भेजा था, भगवान का रूप और भगवान के गुण, क्योंकि भगवान के रूप और गुण ऐसे आकर्षित थे, आकर्षणता है उनमें कि सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो जिस वन में सुखदेव गोस्वामी ध्यानस्थ बैठे हुए थे, वहां पर व्यास जी के शिष्य ने भगवान के रूप के बारे में एक श्लोक गुनगुनाया, बरहा पीडम नटवर वपो कर्ण यो कर्ण कारण बिभ्रदवास कनक कपिसम बेजयंती चवाला रंधान बेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राव सत गीत कीर्ति। जब इतना बढ़िया श्लोक गुनगुनाया व्यास जी के शिष्यों ने निर्जन वन में जाकर के, सुखदेव जी समाधि में समाधिस्थ थे और उनके कान में भगवान के रूप के बारे में जब ये श्लोक गया, जैसे उनके कान में ये मंत्र पड़ा भगवान के रूप का कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो बाबा की समाधि खुल गई, समाधि खुल गई और विचार करने लगी कितना सुंदर बालक, बराहा पीडन जो मयूर पंख का मुकुट धारण करने वाला है और सामला सामला पीतांबर वाला बेजंती माला को धारण करने वाला और कानों में पीले कनेर पुष्प लगाने वाला, इतना सुंदर बालक जो बड़ी मधुर मधुर बंसी बजाने वाला, अब तो बाबा की आंखें खुल गई, बस वही रूप सामने आ गया, भाई इतना सुंदर बालक तो न कभी हमने देखा ना सुना। बाबा की आंखें खुल गई, एकदम समाधि टूट गई उनकी, फिर विचार किया, अरे भाई संसार में होगा कोई सुंदर? अरे इतना सुंदर है वो बालक तो कोई गारंटी नहीं है, सुंदर है तो सुंदर उसके गुण भी हो, भाई बहुत से लोग सुंदर ज्यादा होते पर उनके गुण अच्छे नहीं होते, है ना? अब जो सुंदर हो और गुण भी उसके बढ़िया हो तो ठीक है, अब इतना बालक सुंदर है अब पता नहीं इसके गुण बढ़िया होंगे कि नहीं होंगे, होगा कोई, चलो फिर अपने ध्यानस्थ ध्यान करते, वो ध्यान करने लगे पर बाबा का अब ध्यान लगता ही नहीं, जैसे ही आंख बंद करके बैठते बाबा तो सामने वही काला काला मुरली वाला पीतांबरधारी मयूर मुकुट धारण करने वाला वही बालक सामने उनके नजर में वही बार बार आता है, उनके मन से हटता ही नहीं। सुखदेव बोले, भाई बालक तो बड़ा सुंदर है, मेरे मन में बस गया, क्या करूं अब, फिर कहीं कहीं उसमें ये गड़बड़ निकली, उसमें गुण बढ़िया नहीं हुए तो व्यर्थ में बेकार फंस जाएंगे, क्या करें? इसी चिंता में थे तब तक दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान गुण कैसे हैं?
अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंहासया पायदप्य साधुवी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम।
दूसरा श्लोक भगवान के गुणों के बारे में, आहा भगवान के कितने बढ़िया गुण हैं कि अहो बकियम, जो पूतना भी राक्षसी और भगवान को मारने के लिए जहर लगा करके आई हलाहल जहर अपने स्तनों से, और भगवान ने उसे भी वो गति दी, माँ की गति दे दी, अपने धाम को पहुंचा दिया। बताओ कितने दयालु भगवान है जो शत्रु का भी कल्याण करते हैं, इतना दयालु और कौन हो सकता है जिसकी शरण ली जाए, अर्थात शरण लेने के योग्य कोई देव है तो भगवान श्री कृष्ण। अब तो बाबा की आंखें खुली और बोले, अरे भाई इतना सुंदर गुण है उसका, क्योंकि भगवान की गुण है। भगवान के कैसे गुण है?
बोले दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण प्रभु गिन न पाऊ।
दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण प्रभु गिन न पाऊ।
दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण प्रभु गिन न पाऊ।
दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण प्रभु गिन न पाऊ।
भगवान कैसे बोले दीन बंधु है, उनका स्वभाव आहा, जितने सुंदर हैं भगवान उससे भी ज्यादा सुंदर भगवान का स्वभाव है। वो किसी के गुणों और अवगुणों को नहीं देखते। क्या देखते हैं? अब ये मेरी शरण में आया है, मेरे पास आया है, तो उसके पापों को और पुण्यों को नहीं देखते, यही देखते हैं मेरी शरण में आया है। भगवान उसे अपनी शरण में लेते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तो यहां भगवान ने पूतना को भी जब मोक्ष प्रदान कर दिया तो सुखदेव गोस्वामी सुने तो एकदम बड़े विकल हो गए, ओहो इनसे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। अरे भाई आगे सुनाओ फिर क्या हुआ। ब्याजी से शिष्य बोले देखो महाराज हमको इतना ही आवे, हमारे गुरुजी ने इतना ही पढ़ाया कि हमें भेजो है, इससे ज्यादा हमको नहीं आते और इससे ज्यादा सुनना है। तो ऐसे एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं, 18,000 मंत्र हैं ऐसे। बोले किनके पास है भाई? बोले व्यास जी के पास है। अरे तो व्यास जी तो हमारे पिताजी हैं, चलो हम उनके पास जाते हैं और इन मंत्रों को सीखेंगे। तो जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे वो भी आकर्षित हो गए भगवान से। क्यों? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि आत्मा रामस्य मुनि वो निर्गुणता वृक्ष में, बड़े बड़े आत्माराम मुनि भी और भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्यों इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं। सुखदेव गोस्वामी की तरह जन बोले पूतना बो लोक बालघुनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया हरे स्तनं दत्वाप सद गति। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन देखो पूतना राक्षसी थी, उसका नाम भी बढ़िया नहीं पूतना, और राक्षसी थी, भोजन भी कैसा रुद्रासना, वो उसका भोजन ही वो बच्चों का खून पीती थी, बाल हत्यारी थी, यहां तक कि भगवान को भी मारने की नियत से स्तनपान कराने आई थी भगवान को जहर पिलाने के लिए। पर धन्य है भगवान कि भगवान ने स्तनम दत्वाप सदगतिम, भगवान उसको सदगति प्रदान की। राजन जब पूतना बुरी नियत से भगवान के पास आई तो भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यस्सन प्रियतमं किमनो रक्तास्तन्मातरो यथा। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन जब पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया, उनकी नकली मां बन के आई, फिर भी भगवान उसको मोक्ष प्रदान किया, और कोई व्यक्ति कोई भक्त बड़े प्रेम के साथ भगवान को कुछ अर्पित करे, भगवान को कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी अर्पित करे, तो उसकी सदगति में कोई संदेह है क्या? और उनके बारे में क्या कहा जाए जिन ब्रज गोपियों ने बड़े प्रेम के साथ भगवान को स्तन पान कराया, और उन गैयन के भाग्य की सराहना कौन कर सके जो गैयाओं का भी स्तनपान भगवान ने किया, तो उनकी गति क्या हो सकती है, कितनी बड़ी गति हो सकती है, इसका कोई वर्णन कर सकता है? तो यहां हमें शिक्षा मिलती है कि जब पूतना ने कैसे भाव से भगवान को स्तनपान कराया, और हम रोजाना कहीं भगवान को है ना, भगवान के श्री विग्रह को प्रेम के साथ भोग लगाएं, उन्हें दूध पिलाएं, फल खिलाएं, उनको भोग लगाएं प्रेम के साथ, तो उनकी गति में कोई संदेह है? सुखदेव गोस्वामी कहते कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप से उसे भगवान सदगति प्रदान करते हैं। और कहते हैं राजन ये भगवान की बाल लीला अद्भुत बाल लीला है।
ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम् सुनयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। क्या है ये बाल लीला? वो भी कैसी बोला? अद्भुतम, भगवान की अद्भुत बाल लीला है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान की अद्भुत बाल लीला का श्रवण करता है तो गोविंदे लभते रतिम, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निश्चित रूप से प्रेम की प्राप्ति होती है। जब ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से महाराज परीक्षित ने ये अद्भुत कथा सुनी, अद्भुत बाल लीला सुनी, गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और बोले महाराज गुरुजी ये तो भगवान की अद्भुत लीला बड़ी सुंदर लगी हमको, और भी हमको सुनाओ।
बोले एन एनावतारेण भगवान ईश्वरो हरि करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी चना प्रभो।
महाराज परिचित करें गुरुजी भगवान जिन जिन अवतारों में जो जो लीलाएं करते हैं बड़ी दिव्य लीलाएं करते हैं, भगवान की उन लीलाओं को कथाओं को सुनने पर कानों को बड़ा ही सुख प्रदान करने वाली हैं, वो बड़ी मनोहर लगने वाली हैं, तो उन कथाओं को गुरुजी और सुनाओ। क्योंकि उन कथा के श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है?
यह श्रवण तो अपेति अर्ति वितृष्णा सत्वम च शुद्धति अचरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हरम वदमन्यसे चेत्।
महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुजी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को सुनने से, बोले इनके सुनने से मनुष्य की सारी तृष्णाएं दूर हो जाती हैं और अर्थी भी निकल जाती है। जिन लोगों की कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं साधारणतः लोग अधिकतर कृष्ण की कथा सुनने में आनाकानी करते, आनंद नहीं लेते, लेकिन जो भगवान की इन अद्भुत बाल लीलाओं को सुनते हैं तो भगवान की कथाओं में सुनने की रुचि बढ़ जाती है उनकी, और भौतिक इच्छाओं से उनकी भौतिक इच्छाएं हट जाती हैं, भगवान की कथा सुनने में उनकी रुचि बढ़ जाती है। और सत्वम हृदय अचरेण पुंसः, उस मनुष्य का हृदय शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है भगवान की कथाओं का श्रवण करने से। और क्या मिलता है? बोले भक्ति हरऊ तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है। और भक्ति जब हो जाती है तो तत्पुरुषे च सख्यम, जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति मित्रता स्थापित हो जाती है, मित्रता हो जाती है। तदेव आरम्भद मन से चेत, हे गुरु जी यदि आप चाहें मुझे ऐसी कथाओं के सुनने का अधिकारी समझें तो हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और भी वर्णन करें जो बड़ी अद्भुत और बड़ी कानों को सुख प्रदान करने वाले लग रही हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले राजन तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। बोले महाराज ये सब आपकी कृपा है, सत्संग का प्रभाव है, क्यों सत्संग से ही कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। और आप तो बस हमें भगवान की और कोई लीला सुनाएं।
अथान्यादपि कृष्णस्य तोका चरितम अद्भुतम मानुषम लोकमासाद्य तज्जातिम अनुरोधतः।
महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुजी भगवान श्री कृष्ण की कोई अन्य और भी अद्भुत बाल लीला सुनाओ। अरे भगवान ने इस मनुष्य लोक में अवतार लिया, मनुष्य लोक में अवतार लेकर के बिल्कुल मनुष्यों की तरह साधारण बालकों की तरह उन्होंने लीलाएं की, बड़ी अद्भुत लीलाएं, और लगते ऐसे मानो कोई साधारण बालक हो, परंतु उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत विचित्र लीलाएं, कोई और भी उनकी लीला सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते राजन सुनो।
बोली कदाचिदोत्थानिक कौतुका प्लवे जन्म रिक्ष योगे समवेतयोषितं बादित्र गीत ध्वज मंत्र वाचकै चकार सुनो रविसेचनं सति।
सुखदेव गोस्वामी कहते राजन भगवान जब तीसरे महीना में आए तो भगवान ने अपने आप करवट बदलो, करवट जब करवट बदला तो जो कृष्ण की सेवा में कुछ दासियां थी, कुछ दहाय सेवा करने वाली, तुरंत मैया यशोदा को कही, मैया देखो आज तो लाला ने अपने आप ही करवट बदलो है। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, आहा अब कन्हैया ने लाला ने अपने आप करवट बदलो है तो नंद महाराज को बुलाओ और कोई बहुत बड़ो उत्सव होना चाहिए लाला की करवट बदलने को। नंद महाराज को यह समाचार सुनाया, नंद महाराज गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और बोले हाँ ठीक कह रही हो सोदा जी, लाला के करवट बदलवे को बहुत भारी उत्सव मनाएंगे। अब तो नंद महाराज ने पूरे ब्रज में निमंत्रण दे दियो, देखो भाई लाला को करवट बदलने को उत्सव मनाया जाएगा, सभी लोग आओ। नंद महाराज के यहाँ धन की तो कोई कमी है नहीं, क्यों किसी भी उत्सव मनाने में धन की तो आवश्यकता पड़ती है, पर नंद महाराज के यहाँ धन की कोई कमी नहीं क्योंकि साक्षात भगवती लक्ष्मी वहां निवास कर रही है ब्रज में, तो धन की क्या कमी हुआ। अब तो सभी ब्रजवासी आए, सभी गोपियां आई मंगलाचार गाने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन भगवान श्री कृष्ण तीसरे महीना के थे और उनका जन्म नक्षत्र का भी दिन था उस दिन। अब तो सभी गोपियां आई और बोली मैया सोदा लाओ ढोलक मजीरा मंगलाचार गाएंगे खूब। वो खूब गोपियां हैं मंगल गीत गा रही हैं और ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और मैया यशोदा उन गोपियों के बीच में ही बैठ करके चारों तरफ गोपियां बैठी हैं और बीच में मैया अपने लाला को अभिषेक कर रही हैं। लाला को अभिषेक मैया कर रही है, गोपियां खूब मंगलाचार गीत गा रही हैं, ब्राह्मण खूब वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर वातावरण है। मैया ने लाला को अभिषेक करके फिर लाला को बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण धारण कराए और मैया ने लाला की बड़ी बड़ी आंखें में मोटो मोटो काजल लगा दियो और बीच में टीका भी लगा दिया कि लाला को नजर न लग जाए। और इधर गोपियां गीत गा रही हैं तो कन्हैया की आंखें में थोड़ी थोड़ी नींद सी आवल लगी, तो मैया ने विचार कियो कि लाला को नींद आ रही है तो स्तनपान करा के लाला को पालने में सुलाई दियो। तो मैया ने विचार किया यहां तो गोपियां खूब मंगलाचार गीत गा रही हैं, लाला की नींद खुल जाएगी, तो एक अंत में एक कोने में एक छकड़ा के नीचे लाला को पालनो डाल दियो। अब गोपियां मंगलाचार गा रही हैं, इधर एक असुर शकटासुर कंस का भेजा हुआ एक असुर आया और छकड़े पर ही आकर के बैठ गया, वो बिना शरीर का था। भगवान तो सौभिज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, समझ गए ये दुष्ट आया है, इसका भी उद्धार करना है। तो भगवान थोड़े रोने लगे, मानो भूख लगी है, माँ का दूध पीने के लिए मचले रोने लगे, परंतु वहां बहुत सारे गीत मंगल हो रहे थे तो मैया ने उनकी कन्हैया की आवाज नहीं सुन पाई। कन्हैया रोते रोते अपने पैरों को थोड़ा पटकारने लगे तो छकड़े में जाकर के उसके पैया से जैसे पैर छुआ छकड़ा धड़ाम से ऊपर वाला चला गया और फिर जमीन पर गिरा, छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, कहीं उसका जुआ है, कहीं धुरी है, कहीं पैया है, कहीं कुछ है, और उस पर जो माट मटकी माखन के जो माट मटके थे वो भी सब टूट गए और बड़ी भारी आवाज वही मानो पृथ्वी हिल गई हो। अब तो सभी गोपियां सभी ब्रजवासी बड़े भयभीत हो गए, ये इतनी भारी आवाज कहां से आई। मैया भागी भागी आई अब लाला के पास तो देखा छकड़ा टूटा पड़ा है और उसके पास में बिल्कुल कन्हैया लेटे हुए। मैया का हृदय दहल गया, और बोली हाय रे हाय, देखो यह मेरा नीलमणि, मेरा नीलमणि नमनीत से भी कोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट ये इतना भारी अचानक सकट गिर गया टूटकर। यह बात सुनकर मेरे प्राण नहीं निकले। अभी बताओ मेरे लाला के ऊपर ये इतना भारी सकट गिरा, कहीं मेरे लाला के ऊपर गिर जाता तो मेरे लाला में क्या रहता। अरे ये बात सुन के मेरे प्राण अभी तक है, शरीर में प्राण तक निकले। अरे मैं कहने मात्र की माँ हूं, धिक्कार है मेरी मात्र वास्तविकता को। और लाला को जाकर के मैया ने गोद में उठायो। उतने नंद महाराज आए, ब्रजवासी सभी आए तो नंद महाराज ने तुरंत ही ब्राह्मणों को खूब दान दिया और छकड़ा को सब बलवान गोपों ने ठीक से व्यवस्थित किया उसे। और उन्होंने पूछा कि ये छकड़ा कैसे अचानक गिरा। तो वहां कुछ बालक खेल रहे थे, बालक बोले या कन्हैया ने या लाला ने उसमें ठोकर मारी, छकड़ा ऊपर को उड़ गया। अब ब्रजवासी सभी आश्चर्य करने लगे, क्या कह रहे हो बच्चे तुम, चुप रहो, ऐसा कहीं हो सकता है, बताओ छोटे से बालक 3 महीना को जाके पैर मारवे से छकड़ा ऊपर उड़ जाएगा तुम्हें भारी। किसी ने विश्वास नहीं कियो, विश्वास करते कैसे, क्योंकि उनकी तो कन्हैया में बात्सल्य भाव था। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, नंद महाराज ने अपने भगवान नारायण को स्मरण कियो और ब्राह्मणों को दान दियो, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दियो कि तुम्हारा लाला खूब लंबी आयु होए और सब दुष्टों को संहार करते रहे, ऐसे ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद बिल्कुल सत्य होता है। कौन से ब्राह्मणों का, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, जो कभी झूठ नहीं बोलते, जो दंभ ईर्षा और हिंसा नहीं करते, जो अहमान से रहते हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और नंद महाराज ने खूब ब्राह्मणों को दान दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, इस प्रकार एक नहीं अनेकों असुर आते रहते हैं। ये तो ये जो सकटासुर था, ये हिरण्याकश्यप का पहले पुत्र था, इसका नाम था उत्कच। ये गर्ग संहिता दिया है कि हिरण्याक्ष का पुत्र था, इसका नाम था उत्कच। स्वयंभव मनमंत्र में ये लोमस ऋषि के आश्रम में गया। लोमस ऋषि के आश्रम में बड़ी सुंदर फुलवारी थी, बढ़िया बढ़िया वृक्ष थे, फल फूलों से लदे हुए थे, पर दुष्ट से सहन नहीं हुआ, इनको शोभा नहीं देखी गई लोमस ऋषि के आश्रम की। इसका बड़ा विशाल शरीर था, सब वृक्षों को कुचल दिया इसने। लोमस ऋषि को क्रोध आया, अरे दुष्ट, तू अपने इस विशाल शरीर का इतना अभिमान है, तू सब मेरे वृक्षों को कुचल दिया, जा तू शरीर से रहित हो जा। अब तो तुरंत उसका शरीर का पात हो गया, वो वायुमय हो गया, जैसे भूत होते ना, भूत का शरीर बिना शरीर का ही होता है, खाली वायु में होता है। पर ऋषि से उन्होंने क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा, देखो भाई अब तुम वायु में शरीर में रहोगे कब तक, बोले बेवस्त मन मंत्र तक। अब देखिए ये स्वयंभव मन मंत्र की बात है, स्वयंभव मन मंत्र के बाद स्वारोचिस मन मंत्र आया, फिर उत्तम मन मंत्र, तामस मन मंत्र, रेवत मन मंत्र, छठवां चाक्षुष मंत्र, मन मंत्र चाक्षुष मन मंत्र के बाद जब बेवस्त मन मंत्र आया जो अभी ये चल रहा है, तो बोले बेवस्त मन मंत्र में 28वीं चतुर्युगी में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बेवस्त मन मंत्र में 28वीं चतुर्युगी में और द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं। अन्य युगों में तो भगवान के अंश अवतार और कला अवतार होते हैं, लेकिन इस समय द्वापर युग के अंत में साक्षात भगवान आते हैं। बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो उसका भगवान ने उद्धार किया। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, ऐसे भगवान की एक नहीं बड़ी अनेक लीलाएं। महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी सुनाते जाओ, तो हमको बड़ा आनंद आ रहा है भगवान की बाल लीला सुनने में, और कौन सी लीला हुई। तो सुखदेव गोस्वामी कहते बोले, हे कदारोह मारुणम लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर गोढुम
न सेहे गिर कूटवत।
एकता मतलब कोई विशेष घटना। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेके खूब दुलार रही, खूब प्यार कर रही, और कभी अपनी गोद में लेके अपने हाथों में लाला को झुला रही थी मैया, कभी थोड़ा ऊपर उला देती फिर गोद में ले लेती, है ना, थोड़ा सा ऊपर उलाती फिर गोद में ले लेती, कन्हैया खिल खिल करके खूब हंसते, बड़ा आनंद आता था उनके लिए। इधर उस कंस ने एक दूसरा राक्षस असुर और भेजा, तृणावर्त, जो बमंडर के रूप में आ रहा था। भगवान समझ गए, भगवान ने विचार किया, देखो हमारी मैया तो हमको थोड़ी ऊपर तक झुला रही है, पर हमारे मामा जी ने हमें झूला झुलावे की बढ़िया व्यवस्था करी है, उड़न खटोला भेजो। हमारे मामा ने उड़न खटोला, उस उड़न खटोला में बैठ के खूब बढ़िया आराम से हम झूलेंगे खूब आकाश में। भगवान सर्वज्ञ सब कुछ जान गए, कंस ने कौन सी व्यवस्था करी, किन को भेज रो है। तो गरिमानम शिशोर वोडुम न सेहे गिर कूटवत, भगवान बहुत भारी हो गए, इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि गिर कूटवत, पर्वत के समान भगवान भारी हो गए। क्यों भारी हो गए? भगवान ने विचार कियो कि वो दुष्ट आ रहा है और दुष्ट मेरी मैया की गोद से छीन के ले जाएगा तो मेरी मैया को बहुत दुख होगा, अथवा मेरी मैया के साथी की आसमान उड़ा के ले गया तो मेरी मैया को बहुत कष्ट होगा, तो मैया हमसे अलग हो जाए तब वो असुर हमको लेके जाए तो अच्छा है। तो इसलिए भगवान गिर कूटवत पहाड़ के समान बहुत भारी हो गए, क्योंकि भगवान योगेश्वरेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। हल्के से हल्का हो जाना, भारी से भारी हो जाना, भगवान एकदम खूब भारी हो गई, मैया से वजन सहन नहीं हुआ। मैया ने विचार किया, ये भगवान मेरे लाला में इतना वजन कहां से आ गए हो, कितनो भारी है गोज, मैया से वजन सहन नहीं भयो। मैया ने जमीन पर बैठा दियो लाला को, ये भगवान इतनो वजन कैसे है गोज हमें। पर भगवान की लीला शक्ति से मैया इस बात को भूल गई और कुछ घर के काम धंधे में लग गई, लाला को मिठाई दियो। इधर तृणावर्त नाम का असुर आया, बवंडर के रूप में, आंधी के रूप में, बड़ा भारी अंधकार ही अंधकार कर दिया उसने, धूल उड़ रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, बड़ा अंधकारी, बहुत भयंकर असुर आया बवंडर के रूप में। भगवान श्याम सुंदर हल्के हो गए और वो आकाश में उड़ा के लेके आया भगवान को, जब आकाश में उड़ा के ले गया तो भगवान को खूब आनंद आ रहा, आहा देखो हमारे मामा जी ने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी है, हम आकाश पार खूब झोटा खा रहे हैं, खूब झूल रहे, और वहां से ही पूरे ब्रज के दर्शन कर रहे हैं, देखो ये बरसानो है, ये ललता को गांव है, ये विशाखा को गांव है, ये हमारे श्रीधाम को घर है, ये हमारे मदमंगल को घर है, पूरे ब्रज के दर्शन कर रहे हैं भगवान। और जब वो ज्यादा ऊपर ले गया तो भगवान ने फिर अपना वजन खूब बढ़ायो, इतना वजन बढ़ाओ, इतना वजन बढ़ाओ, वो असुर तो आश्चर्य पड़ गयो कि अरे मैं किसी बालक को उठा के लाओ के धोखे में कोई काली चट्टान उठा ले गया वो पर्वत की, ये तो लगता है काला काला कोई पहाड़ ही है क्या, लगता है कोई काला पहाड़ उठा के ले आया बालक के धोखे में, अब उसको पटकना चाहा, पर भगवान ने कस के उसे पकड़ ली, उसकी गर्दन को छोड़ा ही नहीं, उसे ऐसी गर्दन पकड़ी, उसका गला घोंट के उसका गोविंदा नमो नमः कर दिया, धड़ाम से असुर नीचे गिरा। जैसे ही असुर समाप्त हुआ तो उसकी माया भी समाप्त हो गई, अब तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अंधकार सब दूर हो गया। इधर गोपियां मैया यशोदा बड़ी भारी चिंता में पड़ गई, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया क्यों रो रही है, क्या बात है? मैया बोली मेरे लाला पता नहीं कहां गए हो, यहां बैठा दियो मैंने। कुछ बड़ी बूढ़ी गोपी बोली यशोदा मैया देखो तुम कह रहे हो तुम बुरो मान जाओगी, तुम्हें भली बात हम कहें तुम बुरी सी लगेगी, अरे तुमने अभी बालकनों को कैसे लालन पालन हो तुम सीखो नहीं है, बालकनों को कैसे रखो जाए? अरे बताओ छोटे बालकनों को ऐसे अलग दूर बिठाते? मैं यह सोचा बोली क्या बताऊं, ये बड़ी भारी भूल हो गई। इधर गोपियां बस खोज में निकलती हैं, मैया तो बेहोश हो जाती है। गोपियां खोज में निकलती हैं, जब निकली बाहर तो देखा भगवान श्याम सुंदर बस जमीन पर पड़े हुए पत्तों की सैया पर, और अपने एक पैर के अंगूठा को मुख से चूस रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। बड़ा भारी असुर मरा पड़ा है। गोपियां लाला को उठाए के लाई, मैया यशोदा की गोद में बिठायो। मैया लाला ठीक है अब चिंता मत कर, तो मैया की थोड़ी मूर्छा जगी। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इस प्रकार भगवान ने उस तनावर असुर का भी उद्धार किया। ऐसी भगवान की एक लीला नहीं, अनेकों अनेकों लीला है। बोले एक रार्वक मादाय स्वांकमारोप्य भामिनी, प्रश्न तुम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुतः। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेके बड़े प्रेम से स्तन पान करा रही। कन्हैया बड़े प्रेम से मैया को दूध पी रहे। मैया स्नेह मई मैया इतना स्नेह है कि मैया का प्रेम से खूब दूध बह रहा है, अपने आप दूध टपकता रहता था। और कन्हैया खूब मैया को स्तनपान कर रहे हैं, कन्हैया की तृप्ति है नहीं रही और मैया को दूध कम नहीं है रो, क्योंकि मैया स्नेह मई मैया है, दूध कम होए कैसे? और कन्हैया तो प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के भूखे हैं, बड़े प्रेम के साथ स्तनपान कर रहे। मैया ने विचार कियो ये लाला बहुत देर से स्तनपान कर रहे है, बहुत देर से दूध पी रहे है, ज्यादा दूध पी लेगो तो अपच है जाएगी, जाको पेट खराब है सके। मैया को ऐसो भाव आयो, भगवान मैया के भाव को समझ गए। पर मैया ने विचार कियो कि लाला को अब दूध पीवे से छुड़ाओ तो लाला रोवन लगे, वो नाराज है जाए, वो छुड़ाओ कैसे? तो मैया को एक उपाय सीझो, लाला के पैरों में मैया थोड़ी खुजलाने लगी, गुलगुली सी करने लगी। जब कन्हैया को गुलगुली सी लगी तो हंसने लगे, दूध छोड़ करके हंसने लगे हो। अब जैसे ही हंसे कन्हैया ने मुंह खोलो तो मैया कन्हैया के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड देख रही है, सारा ब्रह्मांड। मैया बड़े आश्चर्य पड़ गई, अरे ये मैं क्या देख रही हूं? मानो भगवान ने मैया को ये बताना चाहो, अरे मैया यशोदा तू बहुत भाग्यशाली है, तू साधारण केवल मेरी मां नहीं, तू जगत जननी है, अकेला मैं ही तेरा स्तनपान नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड तेरा स्तनपान कर रहा है, क्योंकि मेरे अंदर सारा ब्रह्मांड है। तेरा स्तनपान मैं नहीं, सारे जीव सब तेरा स्तनपान कर रहे हैं, मैं अकेला ही थोड़े स्तनपान कर रहा हूं, तू घबरा रही है कि मुझे अपच हो जाएगी। यानी भगवान ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया तो मैया बड़े आश्चर्य पड़ गई, हे भगवान ये मैं क्या देख रही हूं? भगवान ने तुरंत ही फिर कहीं मैया को ऐसो ईश्वर भावना हो जाए तो भगवान ने ऐश्वरी शक्ति को हटा करके वही मैया को वात्सल्य भाव आ गया। मैया बोले अरे कोई सपना देख रही होंगी, मैं बताओ कोई क्या सपना देख लिया मैंने, मेरा तो लाला बताओ 1200 लाला है, जाके मुंह में इतनी बड़ी चीज कैसे आ जाएगी, भला कोई सपनों देखो हो मैंने। मैया ने ऐसो विचार कियो फिर वही वात्सल्य भाव। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन भगवान श्री कृष्ण अब लगभग 1 साल की है विवारे। इधर वसुदेव जी जब सो कन्हैया को अपने लाला को ब्रज में छोड़ के आए तब सो एक एक दिन गिनती, अब लाला 10 दिन को है गो, अब 1 महीना को है गो, अब लाला 2 महीना का हो गया, एक एक दिन गिनते रहते थे। जब 1 साल के है विवारे तो वसुदेव जी ने विचार किया लाला को नामकरण संस्कार तो अभी तक हुआ नहीं है। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा, बड़े तपस्वी गर्गाचार्य जी बड़े तपस्वी संत थे और यादवों के वो पुरोहित थे यदुवंशियों के। तो बसदेव जी उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप थोड़ा ब्रज में चले जाओ ना। बोले क्यों? अरे गुरु जी आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, आप तो सब कुछ जानते हो, त्रिकालदर्शी हो आप, आपसे भला क्या छुपा हुआ है, आपसे क्या छुपाऊं, आपको तो पता ही होगा कि आपको बताया कि हमारा बालक वो देवकी का पुत्र और वो रोहिणी का पुत्र दोनों बालक नंद महाराज के ब्रज में निवास कर रहे हैं ना, अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुए, तो आप वहां चले जाओ उन बालकन को नामकरण करके आओ। तो ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी की प्रार्थना से और गर्गाचार्य जी नंद महाराज के ब्रज में आए। जब नंद महाराज के ब्रज में आए तो नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, महाराज आपने बड़ी भारी कृपा करी, जो आप जैसे महान संत हम ग्रस्तों के घर स्वयं चल करके आए, हम ग्रस्त लोग इतने इतने बिजी रहते, इतने व्यस्त रहते हैं कि संतों के आश्रम पर संतों के दर्शन करने, उनका सत्संग करने के लिए नहीं जा पाते, पर संत बड़े कृपालु होते हैं, स्वयं चल करके आते, आपने बड़ी भारी कृपा की प्रभु, और देखो आप आ ही गए हैं तो हमारे दो बालक है ना उनको नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो नंद महाराज वो तो बात ठीक है, आप जानते हो हम किन के आचार्य, हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, तुम्हारे तो आचार्य भाई सांडली मुनि है, तो अपने आचार्य सांडली मुनि से उनको नामकरण करवाओ आप, और देखो हमसे अगर तुम बालकन को नामकरण संस्कार करवाओगे तो कंस को थोड़ी शक हो सकती है कि देखो गर्गाचार्य जी वहां नामकरण संस्कार करने के लिए गए, कहीं ये बालक वसुदेव जी के ना कहीं हो, और भाई ऐसी संशय है गई, ऐसी शक है गई कि ये बालक वसुदेव जी के हैं, तो आप जानते हो कंस कितना दुष्ट बुद्धि वाला है, कुछ अनिष्ट कर सकता है। अरे महाराज कंस को मालूम ही नहीं पड़ेगी मेरी बहुत बड़ी गौशाला है, वैसे मैं जो भी उत्सव करता हूँ बड़े भारी धूमधाम से उत्सव करता हूँ, सभी ब्रजवासियों को बुलाता हूँ, सभी रिश्तेदारों को संबंधियों को सबको बुलाता हूँ, आज मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, किसी को निमंत्रण तक क्या, किसी को खबर तक भी नहीं पढ़ने दूंगा, मेरी बहुत बड़ी गौशाला है, पर महाराज गौशाला में आप दोनों बालकन को नामकरण कर दो, किसी को नहीं बुलाऊंगा, किसी को पता लगेगा ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन गर्गाचार्य जी तो आए इसीलिए थे, तो बड़ी गौशाला थी नंद महाराज की, गौशाला के बीच में रोहिणी जी यशोदा जी अपने अपने बालकन को लेके जा रही, नवाए धोवाए के बढ़िया वस्त्र पहनाए के, और जाकर के बैठ जाती है वहां गर्गाचार्य जी के सामने अपने अपने बालकन को गोद में लेकर के। गर्गाचार्य जी ने जब बालकन को देखो और जब कृष्ण की ओर देखा, बस उनकी आंखें खुली की खुली रह गई बाबा की, अब तो न पलक मार रहे हैं और न कुछ सांस ले रहे हैं, एकदम ऐसी समाधि सी लगी, आहा हे प्रभु आपने बड़ी भारी कृपा की कि आपका बाल रूप कितना सुंदर छवि, गदगद हो गए, उन्हें अपने शरीर का ही होश नहीं रहा, वो आए तो नाम रखने के लिए, उस समय अपना ही नाम भूल गए कि मैं कौन हूं। भगवान की सुंदर छवि को देख के एकदम मुग्ध हो गए, पर जब उनको बाह्य ज्ञान आया कुछ समय की बात, तब बोले तुम्हारे बालकन को नामकरण संस्कार करो। बोले हाँ महाराज। तो बोले अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुदो गुणई आख्यास्य ते रामिति बलाधिक्याद बलम विदो। गर्गाचार्य जी बोले देखो नंद महाराज ये जो रोहिणी नंदन है रोहिणी पुत्र, इनको नाम हम रखते हैं, पहले इनका राम नाम रखते हैं राम, एक नाम इनका राम है और दूसरा इनका नाम बलराम है, तीसरा इनका नाम संकर्षण रखते हैं, और ये देखो तुम ब्रजवासियों में और यदुवंशियों में बहुत खूब मेल कराते रहेंगे, खूब प्रेम बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार रोहिणी नंदन बलराम जी का नामकरण संस्कार किया, और बोले नंद महाराज से, नंद महाराज तुम्हारो ये सामलो सामलो बालक है ना,
आसन बड़ा त्रयोहस्य ग्रहण तो अनिर्गम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः।
नंद महाराज तुम्हारो ये सलोनो सामरो जो बालक है ना, सामलो सामरो, ये तो हर युग में अवतार लेवे, हर युग में अवतार लेता है। देखो पहले ये शुक्ल यानी शुक्ल वर्ण में था, फिर पीत वर्ण में, और इस समय ये श्याम वर्ण में है। शुक्ल रक्त पीत, और अब ये श्याम वर्ण में है, तो श्याम वर्ण में ये काले श्याम है ना, तो इनका नाम ही कृष्ण रखते हैं, और इनका कृष्ण नाम तो शाश्वत नाम है, इसे तो बदल ही क्या सकते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ये कृष्ण नाम भगवान का शाश्वत है। और नंद महाराज देखो तुम्हारे यह बालक के बहुत नाम है, ये तुम्हारो बालक पहले वसुदेव जी के यहां जन्म, कन्हैया आंखों सारा रखने लगे, बाबा पोल पट्टी मत खोल लियो पूरी, बताए मंदिर को वसुदेव जी से जन्म लियो है, दोनों की आंखों बात हो रही है सारे भी। तो बोले पहले कभी इसने वसुदेव जी ने जन्म लिया होगा, इसलिए इसका नाम एक वासुदेव भी लोग कहेंगे, वासुदेव। और देखो तुम्हारो ये बालक कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात नारायण ही है, ऐसे बोलने वाले थे। कन्हैया बोले बाबा काय को मेरी सब पोल पट्टी खुल रही हो, ये सारा क्या बताना मत पूरी बात। तो बोले नारायण समय, यानी नारायण है न कहकर के नारायण समय, नारायण के समान ही तुम्हारो ये बालक है। और देखो तुम्हारे या बालक पर बड़े बड़ी भारी आपत्ति संकट तो आएंगे, पर चिंता मत करना, तुम्हारे नारायण सारी कष्टों को दूर करते रहेंगे, इस बालक की रक्षा करते रहना, और ये बालक तुम्हें बड़े बड़ी आपत्तियों से संकटों से बचाने वाला होगा, बहुत बारी आपत्तियों से तुमको बचाएगा, सब ब्रजवासियों की रक्षा करेगा ये बालक। आनंद महाराज तुम्हारे यह बालक के नाम एक नहीं, या कि तो अनेकों बहुत सारे नाम हैं। बोले बहुन संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्माण रूपाणी तानि हम वेदनो जनः। कहते प्रभो नंद महाराज आपके इस बालक के एक नाम नहीं, अनेकों 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 नाम होंगे, ये तो जो काम करेगा तो इसके गुण के ऊपर और काम के काम से जैसा काम वैसा इसका नाम। माखन चुराएगा तो माखन चोर, गिरिराज उड़ाएगा तो गिरधर मुरलीधर, यानी जो काम करेगा वही इसके नाम पड़ेंगे, हजारों हजारों नाम होंगे। देखो उन नामों को आप सब नहीं जानते, मैं जानता हूं, और इनमें एक विशेषता क्या होगी आपके बालक में, सुनो कान खोल के, बोले क्या, बोले यदि तस्मिन् महाभाग प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयोगि भवन्ति तां विष्णुं पक्षाणि वासुरः। नंद महाराज तुम्हारे यह सामने सलोने बालक से जो प्रेम करेगा, यह एतस्मिन् महाभागा, वो व्यक्ति बड़ा महाभाग्यशाली होगा जो प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा, जो मानव जो व्यक्ति तुम्हारे इस लाला से प्रेम करेगा, जो व्यक्ति तुम्हारे लाला से प्रेम करेगा गोपाल जी से, तो वो व्यक्ति जिस प्रकार भगवान विष्णु हमेशा देवताओं के पक्ष में रहते हैं, देवताओं की हमेशा सब संकटों से रक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तुम्हारे लाला या गोविंद की गोपाल की शरण में आएगा, इससे प्रेम करेगा, इसकी भक्ति करेगा, तो सभी प्रकार के कष्टों से बचाता रहेगा, जैसे भगवान विष्णु देवताओं को सब कष्टों से बचा छुड़ाते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा बालक सब
अपने भक्तों को सब कष्टों से मुक्त करता रहेगा। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम कर्म संस्कार करते हैं और नंद महाराज से पूजित होकर के ऊपर अपने चले जाते हैं मथुरा के लिए। मैया यशोदा और रोहिणी अब आपस में बात करने लगी। देखो बाबा ने नाम तो खूब बढ़िया धरे पर बड़े टेढ़े मेढ़े नाम रखे, ये हमसे तो कहने भी नहीं आएंगे कृष्ण कृष्ण क्या क्या बताओ ऐसे नाम रखिए।
पर हम ठीक है वो नाम रख दिए पर अपने लाला के नाम हम अपने और रखेंगे। होता है ना माताएं अपने प्रेम का नाम रख लेती हैं बच्चों का। तो मैया यशोदा क्या नाम रखा है, बोले इसका नाम इसको बोलेंगे कन्हुआ और या को बोलेंगे बलुआ। बलराम का नाम बलुआ और कृष्ण का कन्हुआ, ये मैया का प्रेम का नाम है। तो मैया कन्हुआ और बलुआ कह के पुकारा वो कृष्ण वगैरह उनसे आता ही नहीं था। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इधर जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट भये तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा वही कि हमारे प्रभु जब जब अवतार लेते हैं तब जाके उनके बाल रूप के हम दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं बाल रूप में, चलो उनके दर्शन करके आए। तो भोलेनाथ चल पड़े और अकेले ही चल पड़े, न तो पार्वती को संग लगाए हुए न नंदीश्वर को साथ में लिया है, बस अपनो डमरू और त्रिशूल उठायो मृगशाला को बगल में दबायो और सीधे बाबा नंदगांव की ओर कन्हैया के दर्शन करने के लिए आ रहे।
चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला, भस्म रमी अंग पड़ा कांधे पर झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला, भस्म रमी अंग पड़े कांधे पे झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला, भस्म रमी अंग पड़ा कांधे पर झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला, भस्म रमी अंग पड़े कांधे पे झोला। मृगशाला को शिव ने बगल में दबाया, मृगशाला को शिव ने बगल में दबाया, ओ मृगशाला को शिव ने बगल में दबाया, मृगशाला को शिव ने बगल में दबाया। त्रिशूल डमरू को कर में उठाया, त्रिशूल डमरू को कर में उठाया, त्रिशूल डमरू को कर में उठाया, त्रिशूल डमरू को कर में उठाया। मुख में पड़ा है सिर के भांगों का गोला, भस्म रमी अंग पड़ा कांधे पर झोला। मुख में पड़ा है श्याम सुंदर से मिलने को बोला, भस्म रमी अंग पड़ा कांधे पर झोला।
भोलेनाथ भगवान की जय।
भगवान भोलेनाथ की इच्छा वही कि अपने इष्ट के दर्शन करके आवे श्याम सुंदर के, बाल रूप बहुत सुंदर लगे वो उनको, ऐसी इच्छा वही और बस त्रिशूल डमरू को उठायो बाबा ने और अपने आसन मृगशाला को बगल में दबायो और मैया के सीधे नंदगांव में आए, बोले अलख निरंजन भिक्षाम देही। जैसे ही बाबा ने मैया के दरवाजे पर अलख जगायो, मैया ने विचार क्यों कोई बाबा आयो है ना कजू भिक्षा मांगे के नहीं, चलो खूब बहुत सारी ढेर भिक्षा देंगे जाके ले जो लाला को खूब बढ़िया आशीर्वाद दे के जाए। तो मैया सोने की थाली में हीरा मोती जवाहरात इत्यादि भर के लाए, खूब थाली भर के, धन की तो कमी है नहीं मैया के यहाँ क्योंकि लक्ष्मी निवास कर रही है वहां। मैया सोने की थाली में हीरा मोती इत्यादि बहुत सारी मणि रख कर के लाई, बाबा लो भिक्षा। बाबा ने पीछे को मुंह कर लियो, क्यों बाबा कुछ कम लग रही है का? अगर थोड़ी कम मालूम पड़ रही है तो और लेके आऊंगी। नाराज से क्यों है रहे हो? बोलना बोले मैया देख तेरी हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। क्यों बाबा? मैंने तुमको बताया ना अगर थोड़ी मालूम पड़ रही हो जा दुगुनी ले आओ, चौगुनी ले आओ, दसगुनी ले आओ, तुम जितनी चले उतनी तुम ले जाओ, मेरे यहाँ काबू बात की कमी तो है नहीं। पर मेरे लाला को खूब आशीर्वाद देखी जाओ, नाराज है कि मन जाइयो मेरे दरवाजे से। बोल रहा तो बोले मैया तुम्हारे हीरे मोती ये हमको नहीं चाहिए। बाबा कहाँ चाहिए फिर? देख मैया अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया को पसीना आए वो बाबा को देख के। देख बाबा तेरे बड़े बड़े बाल हैं, सांप और बिच्छू लटक रहे हैं, तेरा जो मेकअप है ना कितना सुंदर है ना, सब सांप को ही सिंगार है, जूरा में सांप, बगल में सांप, बाहन में सांप, गले में सांप, पूरे शरीर पर सांप ही सांप है। अरे बाबा तो को देख करके बड़ी बूढ़ी डर रही हूं, तेरे सामने मुंह पे खड़ो नहीं है जा रो। और मेरा लाला बहुत छोटू है, और मेरे लाला ने क्यों तो को देख लियो, तेरी शकल ऐसी देख रही तो मेरे लाला को बुखार आ जाए, वो बुखार। या वजह से बोले बाबा हे बाबा तेरे हाथ जोड़ू पैया पर हूं, तो जो चाहिए वो ले जा, पर जल्दी से जल्दी यहां से टर जा, चलो जा जल्दी कहीं मेरो लाला निकल जाओ और तो को देख लो तो लाला बहुत डर जाओगे, बहुत डर जाएगो। भोलेनाथ को हंसी आएगी, अरे मैया तू बड़ी भोली भाली है, अरे तू अपने लाला को कोई साधारण बालक समझ रही है? तेरो लाला बिल्कुल नहीं डरेगो, अरे तू अपने लाला के बारे में जानती नहीं है, तेरा लाला कौन है पता है? बोले कौन है? भोलेनाथ बोले वो एकदम भगवान है, परमात्मा है भगवान, तेरा लाला ब्रह्मांड नायक है, तेरा लाला भगवान है। मैया सोदा बोली दारी के द्वारा मत कहिए भगवान मेरे लाला को, बताए मेरे लाला को तू भगवान बताए रो है, कहूं ब्रजवासी सुन लेंगे तो मेरे घर से ले जाएंगे, मंदिर में जाके बिठाई देंगे बाबू के भगवान है जी। बड़ी मुश्किल थी वृद्धावस्था में एक लाला की प्राप्ति वही है, और बाबू तू भगवान बता रहा है, तू भी भगवान हो, चल यहां से, सब भगवान चले आए यहां, मेरे लाला को भगवान बता रहा है, तू भी भगवान होगो ना। भोली वाली मैया न तो अपने लाला को भगवान समझ रही है, न भोलेनाथ को भगवान समझ रही है। मैया ने फटकार दियो, जाए यहां से जल्दी चलो जाए, मैं अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ बोले देख मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करवे की बड़ी आशा लेके आयो, मेरी बड़ी भारी इच्छा है, बहुत आशा लेके आयो कि तेरे लाला के दर्शन करूंगो और मैं दर्शन करके जाऊंगो। मैया सोदा बोली देख हमारे दरवाजे पर बहुत सारे साधु आए, पर तेरो जैसो हटीलो एक भी साधु नहीं आओ, बताए हम तो को मने कर रही है बार बार, फिर ऐसी हटकाए को पकड़ रहा है कि लाला के दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे, मैं लाला के दर्शन कराऊंगी नहीं, तू कैसे जबरदस्ती कर जाएगा। अब तो बाबा एक हट और मैया एक हट, बाबा बोले मैं दर्शन करके जाऊंगो और मैया बोली मैं तो दिखाऊंगी नहीं, देखें तू कैसे मेरे लाला के दर्शन कर ले। अब तो त्रिया हट और योगी हट, भाई दोनों हट एक भी हट कोई किसी से कम नहीं पड़ रही, बाबा को हट पर पड़ गए। देख मैया दर्शन नहीं कराबे तब तक तेरे घर के दरवाजे से टरंगो ही नहीं, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, ठीक है मन जा, देखी मेरे घर में तू कैसे आ जाओ, मैया ने फाटक बंद कर लो, देखी कब तक खड़ो रहेगो तू। अब भोलेनाथ ने चबूतरा पे अपनो आसन बिछाओ, मेरा बिछाला को आसन तो ले गए बगल हम तो बैठे, बाबा ने आसन बिछाया और बस बैठ गए आंख बंद करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम समाधि लगा के बैठ गए, ध्यान पूर्वक जप करने लगे। मैया ने खिड़की में से देखी बाबा बैठे हुए अभी गो के नहीं, मैया ने झांक के देखो खिड़की में से बाबा बैठो हो आसन लगा के, मैया डंडा लेके निकली अरे बोली क्यों रे दारी के तेरे बाप को चबूतरा जो आसन लगा के तू बैठोगे ना, वो यहां से भोली भाली मैया बाबा को फटकार दियो और जबरदस्ती बाबा को वहां से भगा दियो। पर भोलेनाथ बड़ी आशा लेके आए श्याम सुंदर के दर्शन करवे के लिए, पर दर्शन कैसे करें, मैया बड़ी भोली भाली है, दर्शन कराए वारी नहीं, क्या करें अब। तो भोले बाबा को वहां से भगाए दियो। तो नंदगांव से 2 किलोमीटर आगे जाकर के जहां कदम टेरे है उसके पास में ही एक जगह है आशेश्वर महादेव, जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं उन्होंने वो जगह देखी होगी। तो भगवान भोलेनाथ आशा करके बैठ गए कि भगवान के दर्शन करके जाऊंगा, आस लगा करके बैठ गए, देखें कन्हैया कैसे दर्शन नहीं दोगे, मैं तुम्हारे नाम का जप करता रहूंगा, तुम्हारे जप में बहुत बड़ी शक्ति है, तो तुम निश्चित रूप से पिघल जाओगे, दर्शन दोगे ही मुझे। अब तो भोले बाबा समाधिस्थ हो गए, बैठ गए, बैठ करके जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र ये जपतम हेसु, हमेशा महामंत्र का जप तो करते ही भोले ना। इधर भगवान श्री कृष्ण के कान में और भोले बाबा की नाम संकीर्तन की ध्वनि जब पहुंची उनके कान में के भोलेनाथ मेरे दर्शन करवे के लिए आए और भोली भाली मैयाएं मैया ने मोको दर्शन नहीं कराए मेरे भोलेनाथ को, और बड़ी आशा करके आए, पर उनकी बहुत इच्छा है दर्शन करवे की, पर उन दर्शन दूं कैसे, मैया भोली भाली मैया दर्शन करने नहीं देगी, अब कौन सा उपाय सोचना चाहिए। तो श्रीमान जी चतुरों के भी चतुर तो हैं, बहुत होशियार है वो, और उपाय निकालो, उन्होंने रोवन लगे, और ऐसे रोए छुपाने से भी नहीं छुपे। और जब छोटा बालक रोने लगता है तो मैया का धीरज टूट जाता है, क्या हो गया मेरे बालक को, बहुत सारी गोपियां इकट्ठी हो गई लाला की आवाज को सुन के, मैया ये लाला क्यों रो रहा है। तुम हंस रही हो यशोदा मैया, बहुत दुखी है रही है। यशोदा मैया को धीरज टूट गया, लाला को कहा है गो गोपियां ही मैया लाला को कहा है गो क्यों रो रो है। मैया बोली कहा बताओ, बहुत देर से ये चुपे ही नहीं, बंद ही नहीं हुए, कहा है वो जाको। तो गोपियां कह रही हैं काऊ सिन मार दियोरी टोना मेरो मछलो श्याम सलोना,
काऊ सिन मार दियोरी टोना हरी मेरो मछले श्याम सलोना,
काऊ सिन मार दियोरी टोना मेरो मछलो श्याम सलोना,
काऊ सिन मार दियोरी
ओ मेरो मचलो श्याम सलोना, सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना,
मेरो मचलो श्याम सलोना, सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना,
काऊ सिन मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना,
काऊ सिन मार दियोरी टोना मेरो मचलो श्याम सलोना।
नहीं लगायो माथे बीच टिटोना,
भूल गई मैंने नहीं लगायो माथे बीच टिटोना,
ओ भूल गई मैं नहीं लगायो माथे बीच टिटोना,
भूल गई मैंने
नहीं लगायो माथ बीच देखो ना
करो रोई रोई रोदन मचाए रयोरी दिए सब फोर खेलो ना
काऊ सिनी मारियोरी तोना हरि मेरो मचले श्याम सहोरा काऊ सिनी मारियोरी तोना हरि मेरो मचले श्याम सहोरा
मैया सोदा बोली अरे गोपियों कहा बताऊं पतो नहीं या लाला को कहा है गयो जब से जाने रोवो शुरू करो तब से बहुत सारे उपाय आपको छुपाएवे की करे बढ़िया से बढ़िया माखन खवाएवे को दयो बढ़िया बढ़िया खिलौना दे बहुत सारी वस्तुएं दही पर ये कैसे ही बहल तो ही नहीं। गोपियां बोली मैया कोई यहाँ आई तो नहीं जो कोई जादू टोना करेगी हो। मैया बोली आई तो कोई नहीं आयो जरूर हो एक। मैया कौन आयो बोले एक बाबा आयो और केवल लाला के दर्शन करा दे दर्शन करा बड़ी हट पकड़ को मैंने यहां से भगा दियो बाबू। अरे मैया तो बाबा का जादूगर होगो वही कछु जादू टोना करगो है। तो मैया बोली फिर कहा होना चाहिए अरे मैया भाई बाबा को बुलाओ वही जाकू ठीक करेगा वो का जादूगर सो दिखे बाबा वो तो ठीक है गोपियां जल्दी जाओ तो बाबा को लेके आओ। कालंग को गयो मैया बोली यही लंग को गयो उत्तर की दिशा में। तो कुछ गोपियां हैं जाती हैं भोलेनाथ को लेवे के लिए बाबा को लेवे के लिए और बाबा तो आसन जमाए बैठे हुए हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बाबा की आंखें बंद हैं और ध्यान बस बाल कृष्ण पर है ध्यानस्थ होकर के ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे हैं पर आंखों से आंसू की धारा बह रही है। हे मेरे गोविंद हे श्याम सुंदर हमसे कौन सो अपराध बन गो जो प्रभु हमको दर्शन नहीं दे रहे क्या हमको दर्शन नहीं दोगे भगवान बड़ी भारी इच्छा प्रभु ऐसो कौन सो अपराध बन गो जो हमको दर्शन नहीं दे रहे प्रभु मैं तो बड़ी आस करके आपके दर्शन करवे के लिए आयो। ध्यानस्थ जप कर रहे हैं बाबा की आंखों से आंसू की झड़ी बह रही है प्रेम आश्रु बह रहे हैं बाबा की और ध्यान पूर्वक जप में खूब मस्त हो रहे हैं आनंद आ रहा है बाबा को। दर गोपियां पूछी बाबा 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 को ध्यान लग रहा बाबा तो बस कन्हैया पर ध्यान लगाए बैठ जप कर रहे थे नहीं सुना कंधे पर हाथ रखे हे बाबा बाबा सुना नहीं कंधा पकड़ लक लगा दिया बाबा को। बाबा ने आंखें खोल के देखा तो गोपियां खड़ी हैं बाबा डर गए लगता है ये गोपियां यहां से भी हमको भगाएंगी यहां भी हमको नहीं बैठने देंगी क्या बाबा डर गए। तब तक गोपियां बोली अरे बाबा देखो तुम्हारे लिए यशोदा मैया ने बुलायो है नंदगांव में और जल्दी सो चलो तुम क्योंकि जब सो तुम आयो हो तब सो मैया को लाला इतनो मचलो है इतनो रोनो शुरू किया बाबा तब से बंद ही नहीं भयो अब तक। बाबा बोले क्या कन्हैया रो रहे हैं बोले हाँ बाबा जब से तुम आयो तभी से रो रहे हैं वो बालक। बाबा एकदम गदगद हो गए आहा हा हा ये मेरे गोविंद की लीला है ये मुझे दर्शन करने का मेरे प्रभु ने कोई लीला रची है। बाबा बोले तो मिलने काय के लिए बुलाया हुआ है अरे बाबा तुम कुछ जादू टोना जानते हो लाला को ठीक कर दो चलो। बाबा बोले मैं बहुत जादू जानो एकदम बढ़िया ठीक कर दूंगा लाला को तो बाबा जल्दी चलो। अब तो बाबा बड़े उत्साह बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे गोपियां पीछे छोड़ दी बाबा ने बड़े उत्साह में जल्दी जल्दी बाबा जा रहे और मैया कन्हैया को गोद में लाई बड़ी अधीर है रही है बहुत दुखी है रही है। तब तक भोलेनाथ पहुंच गए अरे मैया तेरे लाला को कहा भयो। मैया बोली बाबा देख जब से तू गयो है तभी से जान रोना शुरू किया है अभी तक बंद नहीं हो रहा ये और देख बाबा तू कछु जादू टोना जानते हो तेरे हाथ जोड़ो पांच छीवो मैं लाला को ठीक कर दे तू कैसे। भोलेनाथ बोले मैया तेरे लाला को बिल्कुल ठीक कर दूंगा पर मेरी गोद में रहना पड़े वो मैया बोले बाबा तू गोद में ले ले पर मेरे लाला को ठीक कर दे जब भोलेनाथ ने भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोद में लियो, आहा, जैसे अपने हृदय से लगाया तो बाबा एकदम बस प्रेम में विभोर हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। बाबा की आंखों से आंसू की धारा ऐसी बह रही है मानो बरसाती। जब भगवान ने देखा कि भोलेनाथ बहुत प्रेमी विभोर हो गए तो एकदम हंसने लगे और उनके हाथ में दही भात को, दही और नहीं माखन और मिश्री को हाथ में ग्रास लगा हुआ था, मैया ने दिया था माखन और मिश्री का लाला, ये खाए के बंद है जाए तो ठीक है चुप जाए तो, पर कन्हैया वो ग्रास हाथ में ले वही, और कन्हैया ने भोलेनाथ के मुंह में माखन मिश्री को ग्रास लगाई दियो। भोलेनाथ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, आहा आज मुझे श्याम सुंदर के हाथों और माखन मिश्री मेरे प्रभु ने मुझे प्रसाद खिला दियो, प्रभु कितनी कृपालु हुई मेरे गोविंद, कहां पहले दर्शन नहीं दिए और दर्शन दिए तो इतनी कृपा बरसा दी मेरे ऊपर। भोलेनाथ एकदम प्रेमाश्रुओं से रोने लगे गदगद, उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है और कन्हैया खिल खिल करके खूब हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। अब गोपियां ये देख करके बड़े आश्चर्य पड़ गई, देखो बाबा है तो बहुत जादूगर, बाबा करामाती है, सिद्ध बाबा है, तो जाने हमारे कन्हैया को रोए वो अपने ऊपर ले लियो, जाने अपनों हंसबो तो कन्हैया को दे दियो और लाला को रोए वो जाने अपने ऊपर ले लियो, ये बालक ये बाबा अब रो रो है और हमारे कन्हैया खूब हंस रो है, बाबा करामाती तो है भाई। अब तो ब्रजवासी सभी खूब प्रसन्न है गए, तो सबका धीरज टूट गया था कन्हैया जब से रोने लगे तो। नंद महाराज खूब प्रसन्न हुए, बाबा अब तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, तुम जो कुछ चाहिए मांग लो। भोलेनाथ बोले नंद बाबा जो चाहिए, बोले हाँ बाबा तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, तुमने हमारे कन्हैया को ठीक किया है ना। अच्छा बाबा दोगे आप? बिल्कुल देंगे, तो मैं यही चाहता हूं कि आपके इस बालक का प्रसाद ही हमको मिलता रहे, आपके इस बालक का झूठन प्रसाद हमको मिलता रहे। बाबा वचन तो दे चुके, ठीक है बाबा जब मैंने कह दिया है तो तुमको मिलेगा, तो आज भी आप नंदगांव में जाएंगे तो नंदगांव खूब ऊंचे पर मंदिर बना हुआ है भगवान कृष्ण का, बलराम का, नंद भवन है खूब बढ़िया, और नीचे सीढ़ियों के नीचे आशेश्वर महादेव की स्थापना करी हुई है। तो आज भी नंदगांव में वो प्रथा है कि जब भगवान को भोग लगता है तो भगवान का वो प्रसादी किसी को न दे करके पहले भोलेनाथ के पास वो प्रसादी भोग लगता है, फिर आकर पहले भोलेनाथ को प्रसाद रखते हैं वहां, तब वो किसी को प्रसाद फिर दिया जाता है, आज भी वो प्रथा है। शुकदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, अरे काले न गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजयरतु। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अब कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम दोनों ही नंद के आंगन में अब पैयन पैयन रहने लगे, यानी पैया पैया नहीं पैया नहीं घोंटू घोंटू रेंगने लगे। जब घोंटू घोंटू रेंगते थे दोनों कृष्ण और बलराम तो बड़ी सुंदर छवि लगती उनकी, एक तो मैया यशोदा और मैया रोहिणी दोनों बालकन को खूब बढ़िया श्रृंगार करती, निलाय धुलाय के बढ़िया से वस्त्र पहनावती, मैया यशोदा अपने श्याम सुंदर को पीली झंगुलिया पहनावती और मैया रोहिणी बलराम के लिए नीली झंगुलिया पहनाती थी, भगवान बलराम के शरीर पर गौर सुंदर शरीर पर नीला वस्त्र बड़ा सुशोभित होता था और भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर पीला वस्त्र बड़ा ही शोभावान लगता था, दोनों खूब बढ़िया श्रृंगार करती थी उनका। तो खूब आंगन में खूब जब घोंटू घोंटू चलते हैं तो मैया उनकी इस छवि को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों ही अपने घर के काम धंधों को भूल गईं, बस उन बालकों की देखरेख में रहती थीं। कि कहीं अग्नि की अंगीठी के पास न पहुंच जाए, कहीं नुकीले वाले अस्त्र शस्त्र के पास न पहुंच जाए, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले कुत्तों के पास न पहुंच जाए। नटखट तो ये दोनों बालक है ही नहीं, क्योंकि वो पूरे आंगन में नंद भवन घूमते ही रहते, नटखट शुरू से ही थे वो। बड़ी उनकी सुंदर छवि थी, घुंघराले बाल थे, कमल जैसा मुख था, बड़े बड़े नेत्र थे। मैया आंख पर काजल लगाती, बीच में ठिठुरा लगाती थी, बड़ी सुंदर उनकी छवि लगती थी। सभी गोपियां ये सुंदर छवि के दर्शन करती रहती थीं। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के बाद कुछ और बड़े हुए तो सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन बोले, काले नाल्पेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभि पदभी विचक्रमतुरंजस। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, जब बड़े हुए तो अब घोंटू घोंटू न चल करके अब तो श्रीमान जी पैया पैया चलन लगे, दोनों ही भैया। तो जब घोंटू घोंटू चलते तो उनका पैर रुकता नहीं, सब पूरे आंगन में घूमते रहते थे। जब थोड़े बड़े हुए अब तो वो पूरे ब्रज में घूमन लगे। अब उनके बहुत सारे सखा हो गए, बहुत सारे सखा बराबर के, जैसे बच्चे आ रहे तो भैया दोनों, ऐसे बहुत सारे उनके सखा हो गए, बहुत सारे उनके बालक मित्र हो गए। भगवान ने सब उन सखाओं से कहा, श्रीधाम मधुमंगल इत्यादि से, अरे भाई तुम इतने सब कमजोर कैसे लग रहे हो, तुम्हारी एक एक नस एक एक हड्डी दिख रही है, क्या कारण है, क्या तुम्हारी भैया तुमको माखन नहीं खिलाती है। बालक बोले, भैया माखन खिला थोड़ो खिलावे। बोले, क्यों घर में माखन नहीं होता। भैया माखन तो खूब होए, पर हमारी मैया सब माखन को बेके बेके ले मथुरा ले जाती हैं। कन्हैया बोले, अच्छा मथुरा सारा माखन चला जाता है हमारे गोकुल का। मथुरा में हमारे मामा कंस के पहलवान खाए खाए के माखन खूब मोटे ताजी हट्टे कट्टे हो जाएंगे, और हमारे सखा बेचारे दुबले हो जाएंगे। मान लो कभी झगड़ा भी हो गया तो कैसे काम चलेगा। बोले, सखाओ देखो माखन तुमको नहीं मिलता तो मैं व्यवस्था करूंगा। बोले, क्या व्यवस्था करोगे भैया। बोले, व्यवस्था क्या करेंगे, अपने घर से थोड़ी खिलाएंगे, फिर क्या करोगे। बोले, चोरी करेंगे। चोरी करोगे। बोले, हाँ चोरी करके माखन तुमको खिलाएंगे खूब। तो भैया चोरी को नाम ही बुरो है, चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे तो हमारी पिटाई होगी। भगवान बोले, कोई बात नहीं, पहले तुम इसका खूब प्रैक्टिस करो पहले। बोले, कैसे प्रैक्टिस करें भैया। बोले, देखो आज तो सब अपने अपने घर जाओ, और जाकर के देखो तुम्हारी मैया किधर चली गई है, आंख बचा करके माखन खाइयो, है ना। तो घर में ही चोरी करे वो सीखो। तो सब सखाओं को भगवान ने इस प्रकार कह दिया कि जाओ अपने अपने घर जाकर के चोरी करे वो सीखो पहले घर में ही, और फिर कल आकर के हमको सब इसकी रिपोर्ट देना कि किसको सफलता मिली। बोले, ठीक है भैया। तो सभी बालक अपने अपने घर चले जाते हैं, और वो चोरी माखन की चोरी करते हैं, और उस चोरी की जो रिपोर्ट है वो कल कन्हैया को आकर के देंगे वो, है ना।